ॐ जय जगदीश हरे ओ स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनो के संकट दास जनो के
विषय विकार महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसायने नमो अयं वैष्णवाय कुर्महे समे कामान कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णो ददातु कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं परमेश्यं राज्यं महाराजमाधिपतमयं समन्प्रियाय सर्वभूमः सर्वायुषा
अन्तःपराः
पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराजिभिः तदप्येष श्लोको विहितो मरुतः परविष्टारो मृतृश्यामसि अवीक्षस्य काम प्रविष्टे देवाः सभासद इति ॐ विश्वतः सुरदः विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् सम्बाहुभ्याम् दमति सम्पत्रेरधावा भूमिजन्नन्यदेवै सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलब्धे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पे विल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वम् पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद ॐ शाङ्गायस्तपरिवाराय सायुधायस्त शक्तिकाय श्रीकृष्णाय नमः यथा लब्धोपचार मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् समर्पयामि कोलिस्यावर रामचन्द्र की जय मोर्मुकुटवंशी वाले की जय बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय बोले श्री वेदव्यास जी महाराज की जय बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय बोले श्री परीक्षित जी महाराज की जय।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
Krishna.
हरियावर राम चंद्र की
जय।
मोर मुकुटवंशी वाले की
जय।
श्री वेद व्यास जी महाराज की
जय।
श्री सुखदेव जी महाराज की
जय।
श्री परीक्षित महाराज की
जय।
श्रीमद् भागवत महापुराण की
जय।
अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरिञ्चिनुतं शरण्यं धृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मेष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दैतयेप्सितमन्वधाव वंदे महापुरुषते चरणारविन्दौ। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणौ सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। योऽस्योत्प्रेक्षकवादिमध्यनिधने यो व्यक्तजीवेश्वरो यः सृष्ट्वेदमनुप्रविश्य ऋषिणां चक्रे पुरः शास्तिताम् यं सम्पद्यजहत् त्यजामनुषयी सुप्तः कुलायं यथा तं कैवल्यनिरस्तयोनिमभयम् ह्येदस्रं हरि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीना आनन् दधामनिचिदेकरसे द्वितीये तस्मिन् पदेस्तु मम चित्तमगोचरेऽपि यत्सद्व्रजस्थितिजुषाम् सुहृदां कुमारादीनामधीनमिव गोचरतामुपैति यावन्निरञ्जनमजं पुरुषं जरन्तम् सञ्चिन्तयामि निखिले जगति स्फुरन्तम् तावद्बलात् स्फुरति हन्तर्हिदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जनपुञ्जमञ्जु
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन्नानंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र के पावन श्री चरणों में कोटिशह वंदना कर भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण एवं परम भागवत जनों के श्री चरणों में वंदना कर श्रीमद् भागवत कथा की रस मूर्ति के रूप में विराजमान उपस्थित सभी सज्जनों एवं माताओं बहनों को यथा योग्याभिनंदन कर मैत्रेय विदुर के अंतर्गत चल रही कथा पर आगे विचार किया जा रहा है। देखो, हम लोग श्रीमद् भागवत को अभी तीन वक्ताओं के मुख से सुन रहे हैं। एक वक्ता है सूत जी महाराज, जो शौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य में सुना रहे हैं। उनकी कथा के अंतर्गत श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को गंगा तट पर सुना रहे हैं और सुखदेव जी महाराज अपने कथा प्रसंग में गंगा तट पर मैत्रेय जी विदुर जी को कथा सुना रहे हैं। कैसा विचित्र समागम है, कहने वालों का, सुनने वालों का कितना आदर है एक वक्ता का दूसरे वक्ता के प्रति। सूत जी ने कैसी महिमा सुखदेव जी की गाई है और सुखदेव जी ने कहा मैत्रेय जी महाराज का ये संवाद देकर उनकी प्रशंसा बताई है। वास्तव में जो भागवत को कहने वाला होता है उसकी दृष्टि में सभी पुरुष भागवत होते हैं। वो सभी को भगवान का संबंधी मानता है और जो भागवत का श्रोता होता है वह भी जब तक वक्ता की भावना, वक्ता के मर्म को नहीं पहचानता तब तक वो श्रोता और वक्ता की दृष्टि से भेद है। वो उस मर्म तक पहुंच जाने के पश्चात वक्ता और श्रोता का दूसरे लोग ही अर्थ करते हैं, वो उस वक्तव्य के साथ एक हो जाते हैं। कल कैसा अच्छा प्रसंग चला कि राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के सामने अपनी अनेक जिज्ञासाओं से भरा हुआ प्रश्न किया और उसके उत्तर में सुखदेव जी महाराज विदुर जी से अनेक प्रकार के प्रश्न करवाकर मैत्रेय जी के सामने उपस्थित कराते हैं। दोनों की प्रश्नावलियों को देखेंगे तो बहुत बातें समान मिलेंगी। जो परीक्षित ने पूछा है सुखदेव जी से और जो विदुर जी ने पूछा है मैत्रेय जी से, ये दोनों ही प्रश्नावलियां आपस में बहुत मिलती जुलती हैं और कुछ एक विशेष परीक्षित ने अलग से पूछा तो कुछ एक विदुर जी ने भी अलग से पूछ लिया, तो दोनों का ही उत्तर कहां मिलता है? भागवत में मिलता है। सुखदेव जी महाराज ये बताना चाहते हैं कि जिस भागवत को परीक्षित में सुनाता हूं ये भागवत कैसा विचित्र है, जिस भागवत को कहे बिना भगवान भी न रह सके और जिस भागवत को सुने बिना संत महापुरुषों ने भी अपनी साधना को अधूरी ही समझा है। आइए अपने प्रभु का इष्ट देव का स्मरण करके हम लोग पहले सुखदेव जी और परीक्षित के संवाद में बैठते हैं और वे हमको मैत्रेय और विदुर का संवाद सुनाते हैं, वो संवाद सुनते हैं। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि हे विदुर, तुम्हारा वंश बड़ा श्रेष्ठ है और तुम स्वयं एक भगवान के प्रधान भक्त हो, इसीलिए भगवान की कथाओं को तुम नित्य नए नवीन बनाते हुए पूछ रहे हो। मैं तुम्हारे लिए नहीं, संपूर्ण मनुष्यों के परम आनंद के लिए भागवत को सुनाता हूँ, जिस भागवत को संकर्षण भगवान ने सुनाया है। अब देखो, कल आपने सुना था कि भागवत को नारायण भगवान ने वैकुंठ में सुनाया ब्रह्मा जी को। यहाँ कहते हैं कि पाताल लोक में भगवान संकर्षण ने सुनाया। भगवान वही है, भगवान के स्वरूप और स्थान अलग अलग हो गए लेकिन भगवान वे ही है। वे भगवान वैकुंठ से लेकर पाताल तक भागवत को सुनाते हैं, ये बात बतानी है। तो संकर्षण भगवान शेषनाग की गोद में विराजमान हुए हुए जिस समय ये भागवत सुनाते हैं, उस समय उनके पास सुनने के लिए सनकादि ऋषि आए और सनकादि ऋषियों ने अपने माथे पर जटाओं के अंदर गंगा जी का जल लिया और उस जल से उन्होंने संकर्षण भगवान के चरण धोए और फिर सनकादि ऋषियों के पश्चात उनमें से सनत कुमार ने ये भागवत सांख्यायन को सुनाया। सांख्यायन ने यही भागवत हमारे गुरु पराशर ऋषि को सुनाया और पराशर ऋषि ने ये कथा मुझे सुनाई और मैंने आपको सुनाई। 6 संवाद है ये, 60 संवाद ही ये भागवत भगवान से जो निकली उसमें 6 संवाद है। देखो, नारायण भगवान ने सुनाई ब्रह्मा जी को, तो नारायण ब्रह्मा और फिर ब्रह्मा ने सुनाई नारद को, नारद ने सुनाई व्यास जी को, व्यास जी ने सुनाई सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने सुनाई परीक्षित को। 6 ये हो गए और 6 ही इधर हो रहे हैं कि संकर्षण भगवान, उनसे सनत कुमार, उनसे सांख्यायन, उनसे पराशर, उनसे मैत्रेय और उनसे विदुर। ये 60 संवादी भागवत है और वैसे यहां भी 3 का संवाद चल ही रहा है। तो वे नारद जी महाराज, ये मैत्रेय जी महाराज विदुर जी को सुनाते हैं कि तुमने पूछा था कि भगवान संसार को क्यों बनाते हैं, तो कहते हैं भगवान ने ये संसार अपने सुख के लिए बनाया क्या कि नहीं? अपने सुख के लिए नहीं बनाया, क्योंकि स्वात्म रतौ निरी है, भगवान तो अपने स्वरूप भूत आनंद में मस्त रहने वाले, उन्होंने ये भागवत ये उन्होंने ये संसार को क्यों बनाया? तो क्यों बनाया, ये उनका एक संकल्प हुआ। संकल्प, वो संकल्प में भी कई विभिन्नताएं हैं। कोई तो कहते हैं एको हम बहुश्याम, मैं एक अनेक रूपों में हूं, ये भी संकल्प था। दूसरा भक्त कहता है कि ये नहीं है, भगवान अपने प्रेम का प्रदान करना चाहते हैं, क्योंकि प्रेम में एक अकेला नहीं रहता, प्रेम में एक के दो होते हैं तब प्रेम बढ़ता है। और ज्ञान होता है वहां दो एक होते हैं तब ज्ञान होता है। तो भगवान संकल्प कौन सा किए? प्रेम प्रदान का किए। पहले संकल्प किया कि असंतम आत्मानम, अपने आप को एकाकी महसूस किया, अनुभव किया, तो उनको अच्छा नहीं लगा। वो एक रूप और माने अपने को अनेक रूपों में बनाया, और यहां उनका संकल्प है कि मैं सृष्टि में सबको सुख देऊं। तो उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकले। वो कमल था, उस कमल से एक अलौकिक प्रकाश निकला और उस प्रकाश में से ब्रह्मा जी निकले। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि अरे को हम, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। ऐसे करके ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखा तो चार मुख हो गए उनके, ब्रह्मा जी के चार मुख हो गए। अच्छा, ब्रह्मा जी का भी कोई संकल्प नहीं था, ब्रह्मा जी तो भगवान के संकल्प से बने। उन्होंने कहा मैं कहां बैठा हूं भाई, तो मैं बैठा हूं कमल के ऊपर। तो ये कमल का आधार कौन है? तो ब्रह्मा जी अपनी ताकत से उस कमल के आधार को ढूंढने के लिए कमल के अंदर प्रवेश किए। जाते जाते उसमें बहुत वर्ष बीत गया, लेकिन कमल का अंत नहीं मिला। ये क्या है? देखो, ये भगवान को अपने बुद्धि बल से या अपने बल से देखने का प्रयास किया ना, उसका अंत नहीं मिला। और फिर वे निराश होकर के वापस उसी कमल पर बैठ गए। नशीद दारूढ़ समाधि हो गए, वहां उन्होंने अपने मन से समाधि लगाई। समाधि लगाई तो उनके अंदर ही भगवान के दर्शन हो गए, हृदय में ही दर्शन हो गए। ऐसे दर्शन पहले कभी हुए ही नहीं थे। तब उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा सर्प है, उसके हजारों हजारों फण है, फणों पर मड़िया है, और उसके अंदर एक बहुत विशाल श्री विग्रह है, और उस श्री विग्रह में मुख की शोभा अलग ही है, वक्षस्थल की शोभा अलग ही है, और हार वगैरह की शोभा बड़ी न्यारी है। वहां सूर्य इंदु, सूर्य चंद्रमा वायु अग्नि इत्यादि का किसी प्रकार से गमन नहीं है, वो स्वयं प्रकाश है, बड़ा विलक्षण वो स्वरूप है। उसको देख करके उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे कैसा दिव्य रूप है। और फिर वे ब्रह्मा जी बड़ी सरलता से प्रार्थना करने लगे, स्तुति गाने लगे। देखो, स्तुति कर रहे हैं सगुण भगवान की। स्तुति तो सामने तो विराजमान है साकार भगवान, और यहां ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं निराकार भगवान की। एक भी जगह ब्रह्मा जी ने ये नहीं कहा कि आपका मुख कैसा है, आपकी चिबुक कैसी है, आपका हाथ, आपकी वनमाला, इनके एक भी अवयव का वर्णन नहीं किया। और इस स्तुति से जो भगवान प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी पर, इतने आप पूरे भागवत में देख लेना, किसी प्रसंग में ब्रह्मा जी पर भगवान संतुष्ट नहीं हुए। अब यहां जो स्तुति की जा रही है, साकार भगवान के सामने निराकार स्तुति की जा रही है। क्या अर्थ है इसका? ऐसा क्यों किया? क्यों किया तुम्हें पाया? या तो भगवान जाने, परंतु इससे लगता है कि भगवान की चाहे साकार स्तुति करो, निराकार स्तुति करो, चाहे कैसे स्तुति करो, भगवान भाव देखते हैं। भाव साकार रूप है, न तो सर्प के विषय में बताया, न भगवान के किसी रूप के विषय में बताया, कोई रूप की महिमा ही नहीं की कि महाराज आपके चतुर्भुज है, चार भुजों में शंख चक्र गदा पद्म है, और आपके ये पीतांबर है, आपके ये वनमाला है, आपके मुख की जो शोभा है, इनके विषय में कुछ भी नहीं कहा। साकार भगवान निराकार स्तुति, कैसी विचित्र बात है। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि महाराज आज हमको पता चला है कि सब प्राणियों की अंतिम गति, अंतिम आश्रय आप ही हो। ये जो आपका स्वरूप सामने दिखाई दे रहा है, ये वास्तव में सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए है। हस्तकमल आदि की विशेषता नहीं बताई। मैं तो महाराज इससे बढ़कर आपका आनंदमय स्वरूप और जानता भी नहीं हूं। आप इस संसार का मंगलमय कार्य करने वाले हैं और जो लोग आपकी कथा को अपने कानों से सूंघते हैं, अब कानों से कभी सूंघा जाता है, कान से तो सुना जाता है, पर कहते हैं कर्ण विवरई जिग्रंति, कानों के द्वारा जो इसको सूंघते हैं उनके महाराज संसार में कभी कोई दुख नहीं होता। परिवार में रहते हुए साफ लिखा है इसमें, हो परिवार में रहते हुए लोग दुखी होते हैं, संतप्त रहते हैं, मन में एक संताप रहता है, जलन रहती है, प्रसन्नता नहीं रहती, खिन्नता रहती है, लोभ बढ़ता है, शोक होता है, स्प्रियाएं बढ़ती है। ये कब तक बढ़ती है कि यावन नतेंग्रिमाभयम प्रवृणीत लोक है, ये तभी तक बढ़ती है जब तक मनुष्य आपके चरणों का आश्रय नहीं ले लेता। आपके चरणों का आश्रय लेने वाला इस प्रकार से है, वो जो है दुखी नहीं होता। हम देखते हैं संसार में महाराज काम सुख लेश लवा ये दीना, थोड़ा सा सुख है उसके लिए कितने लोग उसके लिए कष्ट उठाते हैं। मधुमक्खी का छत्ता एक पेड़ के टहनी में लगा हुआ है और उसमें से शहद की बूंद गिरती है और वो नीचे एक कुआ है, कुआ उस कुएं के अंदर वो शहद की बूंद गिर रही है। एक मूर्ख आदमी उस पेड़ की टहनी को पकड़ता है, इधर से पकड़ता है, वो देखता है कि कुएं में ये शहद की बूंद क्यों जाए, तो टहनी को पकड़ करके और ऊपर मुख करके उसको खाने का प्रयत्न करता है शहद की बूंद को। अब उसको कहा जाए कि शहद से कोई पेट तो भरेगा नहीं तेरा, और यदि टहनी टूट जाएगी तो सीधा कुएं में गिरेगा, मर जाएगा तू, ऐसा शहद खाया हुआ तेरे काम क्या आएगा। पर वो सामने मृत्यु है, उस मृत्यु को भूलता है और मृत्यु को भूल करके टपकने वाले शहद के लिए लप लपाता है। ऐसे ही महाराज यहाँ लोभा विभूत मनसो अकुशलानि शश्वत, भोग पदार्थों का ऐसा प्राणियों में लोभ लगा है उसके पीछे दौड़ते रहते हैं। जब तक महाराज ये विषयों की तरफ दौड़ रहेगी तावत न संस्कृत रसो प्रतिसंक्रमित, तब तक उसका संसार में आना जाना कभी खत्म नहीं होगा। और एक बात ब्रह्मा जी बहुत बढ़िया बोलते हैं, ध्यान से सुनना कि महाराज आप बड़े बड़े वस्तुओं से इतने प्रसन्न नहीं होते हैं। सारे भागवत में एक जगह आएगी ये बात, ध्यान से सुनना कि मंदिरों में जावे खूब बड़ा मिठाइयों का ढेर लगाए, खूब वहां पर फलों का ढेर लगाए, आज भगवान के लिए बहुत वस्त्रों का ढेर लगाए, कहते हैं आप इतने प्रसन्न नहीं होते उन चीजों से। तो जितने आप प्रसन्न होते हैं सर्वभूत दया, माने सब प्राणियों पर दया करने के भाव से जितने आप प्रसन्न होते हैं उतने आप अपने मंदिरों में खूब सी वस्तु ला करके रखो, उससे आप इतने प्रसन्न नहीं होते। नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारैराराधित सुरगण दिधिबद्ध कामहि यत् सर्वभूत दया सदलभ्य यैको नाना जनेष्वभिहित सुहृदंतरात्मा। क्योंकि जो दूसरे दुखी प्राणियों पर दया करता है वो व्यक्ति दुखी प्राणियों के अंदर मेरा वो भगवान का दर्शन करता है, और जो भगवान के मंदिरों में बहुत बड़ी सामग्री लाकर रखता है वो उसके मन में कोई न कोई कामना है इसलिए करता है। तो कामना के द्वारा पूजा करना और एक दुखी आदमी की सेवा करना उस दुखी आदमी के द्वारा हमको आगे क्या मिलेगा उसके विचार ही नहीं आता, जानता भी नहीं कि कौन है क्या है मेरे क्या काम आएगा, उसकी सेवा करते हैं, उससे आप बहुत प्रसन्न होते हैं। और कहते हैं कि आपके अवतार नाम आदि से व्यक्ति इतने कल्याण को प्राप्त होते हैं कि एक बार भी नाम ले लिया कल्याण हो गया। आपका प्रभाव ऐसा है कि संसार में सब जीवों से सबसे ज्यादा बड़ी उम्र मेरी है, परंतु महाराज मैं भी डरता रहता हूं। यस्माद् विभेम्यहम् अपि विपरार्धधिष्ठ्यम्, दो परार्ध मेरी आयु है, दो परार्ध बहुत लंबी चौड़ी आयु है ब्रह्मा जी की। इस समय में ब्रह्मा जी का 51वां वर्ष चल रहा है, एक पूर्व परार्ध व्यतीत हो गया, अब ये पर परार्ध चालू हो रहा है। कहते हैं कि मैं बहुत डरता हूं, आपसे डरता ही रहता हूं। तो महाराज ये जो अविद्या की पांच गांठें हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये पांच गांठ है, इसमें जीव उलझ जाता है। तो महाराज इस उलझाहट के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे परम सुहृद हैं, इन पांचों प्रकार की गांठों से हमको बचाओ। और महाराज ये शंकर जी आपकी ज्ञान शक्ति हैं और मैं ब्रह्मा आपकी क्रिया शक्ति हूं, अब जैसा आप मुझे आदेश दें वैसा मैं करने के लिए तैयार हूं। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि जब ये उन्होंने स्तुति की तो भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के भगवान ने कहा कि देखो ब्रह्मा जी, ऐसी स्तुति हमारी दूसरा कोई नहीं कर सकता। तुमने जैसी मेरी यहां भक्ति की है, मैं ऐसी भक्ति को दूसरी जगह नहीं देखता हूं। क्यों? कि गुणमयम माम निर्गुणम अनुवर्णयन, तुम्हारे सामने मैं सगुण रूप से आया और तुमने मेरी निर्गुण रूप निराकार रूप से स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कैसी विचित्र बात कही, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा देखो तुम्हारे मन में मेरे प्रति भक्ति है ना, इस कारण से मैं तुम्हें यही बात कहता हूं कि जैसे तुमने पहले सृष्टि का विस्तार किया ऐसे आगे भी तुम सृष्टि का विस्तार करो। तुमने मेरी भक्ति को स्वीकार कर लिया, अब तुम्हारा कहीं बंधन नहीं होगा। ऋषि माध्यम न बदनाती पापियां स्वाम रजोगुण है, ये रजोगुण सबको बांधता है, पर तुमने मेरी भक्ति कर ली, अब ये रजोगुण आपको नहीं बांध सकता। इतना कहकर के भगवान तो भाई हृदय में ही प्रकट हुए थे और वो हृदय में ही अदृश्य हो गए, कंज नाभस तिरोदधे। अब ब्रह्मा जी ने क्या किया कि वो जो कमल था उस कमल के सात विभाग किए, नहीं तीन विभाग किए। देखो ब्रह्मा जी ने तीन लोक बनाए जबकि 14 लोक बना सकते थे, पर तीन लोक बनाए, भूलोक भूवरलोक और स्वरलोक, तीन लोक ही बनाए। तीन लोक क्यों बनाए कि ब्रह्मा जी हैं वो संसार के सब जीवों के अधिष्ठात्री जीव है, सब जीवों में प्रमुख जीव है। तो ये जीव है तीन जगह ही घूमता है, भूलोक भूवरलोक और स्वरलोक। अब नरक वगैरह जो मिलता है वो पृथ्वी के अंदर पृथ्वी लोक में ही आ गया, और पृथ्वी के जो स्वर्ग है सात स्वर्ग वो भी पृथ्वी लोक में ही आ गए, और ऊंचे जो स्वर्गादि है वो भूवरलोक में आ गए, स्वरलोक में आ गए, अंतरिक्ष है वो भूवरलोक में आ गया। माने पाप पुण्य करने के जो फल भोगने के तीन ही जगह है, वो तीनों जगह ब्रह्मा जी ने बनाई। उन्होंने 14 लोक नहीं बनाए, क्योंकि जन लोक महर लोक तपोलोक ये लोक तो ऐसे जो ज्ञानी भक्तों के लिए, ये ब्रह्मा जी नहीं बनाते, ये भगवान बनाते हैं। उन लोकों का निर्माण भगवान करते हैं, ज्ञानी महात्माओं के रहने की जगह कौन बना सकता है, ब्रह्मा जी कैसे बना सकते हैं। और फिर भगवान ने, फिर ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि बनाई, ये महतत्व बना, फिर अहम तत्व बना, फिर इंद्रियां बनी,
फिर वनस्पतियां बनी, फिर पशु पक्षी बने, नौवीं सृष्टि में ये मनुष्य आता है। मनुष्य सबसे ऊंचा मनुष्य, देखो नौमा नाम, नौवीं संख्या, नौ संख्या सबसे ऊंची संख्या होती है, नौ के बाद आपका अंक गणित खत्म, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, नौ के बाद आप दस करेंगे तो वो नौ में एक मिलेगा वही दस होगा। सब संख्याओं का समावेश नौ में है, सबसे ऊंची संख्या है नौ की, इसलिए मनुष्य सबसे ऊंचे लोक में है। मनुष्य शरीर में आया हुआ प्राणी सब प्राणियों से ऊंचा प्राणी है, तो नौमा मनुष्य है। इसका थोड़ा सा लक्षण किया कि रजोधिकाः कर्मपरः दुखेत सुखमानिनः, रजोगुण इनमें ज्यादा होता है, क्रियाशील ये होते हैं और दुख के अंदर सुख की कल्पना करने वाले होते हैं। मनुष्य अज्ञान अवस्था में रहता है तो यही काम करता है। और दसवें नंबर में ऊंची सृष्टि है ये भूत प्रेत पिशाच, ये पितर असुर यक्ष राक्षस चारण किन्नर विद्याधर, ये सब जो है देव सर्ग में आ जाते हैं। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि देखो इस संसार में कई परमाणु से सृष्टि मानते हैं, बहुत छोटा परमाणु परमाणु जिसका किसी प्रकार से और विभाग नहीं हो सकता। देखो उनके मत में क्या है परमाणुवाद, क्या होता है आरंभवाद विवर्तवाद पर और परमाणुवाद। ये परमाणुवाद का वर्णन भागवत में यहां भी आता है और ये परमाणुवाद का वर्णन पांचवें स्कंद में भी आएगा, थोड़ा सा संकेत आएगा। तो परमाणुवाद में ही क्या है कि जितने ये तत्व हैं, प्राकृतिक तत्व हैं, ये परमाणु रूप से नित्य रहते हैं। ये भी बताया कि तत्र गंधवती पृथ्वी सात विविधा नित्या अनित्या च, न्याय शास्त्र में इसको पृथ्वी को नित्य मानते हैं। कैसे है नित्य कि नित्या परमाणु रूपा अनित्या कार्य रूपा च, ये परमाणु रूप से तो नित्य रहती है और कार्य रूप से जैसे दिख रही है ना ऐसे अनित्य रहती है। परमाणु का मतलब पृथ्वी का छोटे से छोटा अंश, ऐसे आकाश का अंश, सबका छोटे से छोटा अंश ये पड़े रहते हैं और फिर इनका विस्तार होता है। इन परमाणुओं का जो विस्तार करने वाला होता है वो कहते हैं कि इन परमाणुओं को लेकर सृष्टि भगवान बनाते हैं। और उस परमाणुवाद में एक निरीश्वर सिद्धांत भी चलता है कि नहीं नहीं ये परमाणु अपने आप ही मिलते रहते हैं और मिलते मिलते जब बृहत स्तर पर बन जाते हैं तब इनको सृष्टि के रूप में देखा जा सकता है, वहां ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, ऐसा भी दर्शन है। तो आरंभवाद में भी ऐसा ही है, परमाणुवाद में भी ऐसा ही है, विवर्तवाद में भी ऐसा ही। विवर्तवाद थोड़ा दूसरा है, विवर्तवाद तो विशेष प्रसिद्ध है ही। तो इनमें कहीं ईश्वर की आवश्यकता मानते हैं कई दर्शन ईश्वर की आवश्यकता नहीं मानते, पर भागवत तो यही बात बोलते हैं कि इन सब में ईश्वर की आवश्यकता है, क्योंकि काल रूप से भगवान ही माया को प्रेरणा देते हैं। इसलिए परमाणु समय में भी भगवान का काल तो उसमें है ही, काल के द्वारा ही परमाणु परमाणु से मिलता है, तो इनको मिलाने वाला कोई तो होगा कि काल मिलाता है, काल मिलाता है तो काल किसकी शक्ति से मिलाता है, अंत में ईश्वर को मानना ही पड़ेगा। तो वो जो काल शक्ति है वो काल शक्ति भी कैसी बताई कि भाई वो भी छोटी से आते 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 जो है दिन बनता है, फिर महीने बनते हैं, फिर वर्ष बनते हैं, और वर्ष में भी अलग अलग है। पृथ्वी लोक के जो वर्ष है वो 360 दिन के होते हैं, देवलोक के जो वर्ष होते हैं वो देवलोक के वर्ष 360, हमारा एक वर्ष तो उनका एक दिन निकलता है, देवताओं का एक दिन होता है, और पितरों का है वो पितरों का और ही होता है। पितरों का हमारे यहाँ एक पक्ष होता है 15 दिन, तो पितरों का वहां पर एक दिन होता है। ये सब काल के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग गणनाएं हैं। अब हमारे यहाँ पृथ्वी के ऊपर देखो, कभी आप पुराणों में पढ़ेंगे और जगह पढ़ेंगे 60,000 वर्ष तक उसने तपस्या की। अब कहते हैं 60,000 वर्ष तक तपस्या की, ये क्या चीज है? तो कहते हैं संवत्सर जो होता है, वर्ष जो होता है, उसकी गणना में भी विभिन्नता होती है। कोई एक घंटे को वर्ष मानते हैं, कोई मिनट को वर्ष मानते हैं, कोई सेकंड को वर्ष मानते हैं। इसलिए इनको लेकर के कभी जो है हमको संदेह नहीं करना चाहिए। विदुर जी महाराज कहते हैं कि महाराज ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन सब की मिलाकर के कुल कितनी आयु होती है और इसमें एक ब्रह्मा के समय में कितने मनु शासन कर जाते हैं। तो मैत्री जी कहते हैं कि देखो भाई, 12,000 दिव्य वर्ष होते हैं, 12,000 दिव्य वर्ष। अब 12,000 दिव्य वर्षों को 360 से गुणा कर लो, उसी हिसाब से जो है देखा जाएगा एक एक का। अब 12 कैसे कि जो जितना बढ़िया समय होता है वो उतना ही ज्यादा समय रहता है। जैसे सबसे बढ़िया सतयुग है तो 12 में 4,000 वर्ष सतयुग के हैं। सतयुग के बाद त्रेता आता है तो 3,000 वर्ष तक त्रेता रहता है और फिर 2,000 वर्ष तक द्वापर रहता है और 1,000 वर्ष तक जो है कलयुग रहता है। कलयुग सबसे खराब है तो उसका समय भी सबसे कम है। अब कहते हैं क्या 4,000 में सतयुग हो जाता है कि नहीं? थोड़ा संध्यंश होता है। 4,000 वर्ष है तो इसका 10% कम किया तो 400 हुआ, 400 से दुगुना गुणा करो तो 800 हुआ। तो 800 वर्ष संध्यंश के कहलाते हैं, माने सतयुग और त्रेता के संधि का समय है वो। तो सतयुग का पूरा समय 4,800 माना जाएगा, ऐसे ही त्रेता का पूरा समय 3,000, फिर 10% कम किया तो 300 और फिर उसको दुगुना किया तो 600, तो 3,600 हुआ। ऐसे द्वापर में 2,000 वर्ष, फिर उसका 10% कम किया तो 200, फिर उसको दुगुना किया तो 400, तो 2,400। और ऐसे कलयुग 1,000 है, 10% कम किया तो 100 और उसको किया दो से गुणा किया 200, तो 4,800, 3,600, 2,400 और 1,200, इन सब का टोटल होता है 12,000 वर्ष, 12,000 दिव्य वर्ष। अब ये 12,000 दिव्य वर्ष है, ऐसे उनकी एक 1,000 चतुर्युगी, 1,000 बार सतयुग आता है, 1,000 बार त्रेता आता है, 1,000 बार द्वापर आता है, 1,000 बार कलयुग आता है, तब जाकर के ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है और एक दिन के अंदर 14 मनु शासन कर देते हैं। यावत दिनम भगवतो मनुन भुंजस चतुर्दश, 14 मनु शासन कर लेते हैं और एक मनु का जो शासन कहलाता है वो मनवंतर कहलाता है। और जब ये सृष्टि का प्रलय होता है तो भाई त्रिलोक्याम दैह्य मानायाम, नीचे जो पताल के नीचे सांप रहता है ये शेषनाग भगवान, उसकी क्रोधाग्नि से ये सब जलता रहता है ऊपर की तक। जब ये जलने लगता है तो ऊंचे ऊंचे महापुरुष है वो और ऊंचे लोक में चले जाते हैं। भृगुवादयः महर लोकम गच्छन्ति, भृगुवादी जो ऊंचे लोक में चले जाते हैं और इधर भगवान जो है वो उस शेषनाग के वहां पर विराजमान रहते हैं, तब वहां शेषनाग उनकी स्तुति करता रहता है। और भगवान की बताते हैं कि भगवान एक पलक खोलते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और एक पलक बंद करते हैं तो ब्रह्मा जी की एक रात होती है। ऐसे भगवान पलक खोलते हैं तो ऐसे ब्रह्मा जी के अब 50 वर्ष बीत गए और इस समय में श्वेत वराह कल्प नाम का ये 51वां वर्ष चल रहा है। ऐसे ऐसे करोड़ों करोड़ों, ये एक ब्रह्मांड के विषय में बताइए, ऐसे भगवान के करोड़ों 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 ब्रह्मांड भगवान के वहां पर उपस्थित रहते हैं। कैसे रहते हैं बताया था हमने, खूब तेल लगाओ, देखो शरीर में तेल, शरीर में तेल लगा करके और मिट्टी के धोरे में लोटपोट हो जाओ आपके शरीर के ऊपर कितने कितने मिट्टी के कण हैं, कोई गिन सकता है? कोई नहीं गिन सकता। करोड़ों मिट्टी के कण होंगे, वो बहुत मिट्टी के कण, खूब तेल लगाया हुआ सब मिट्टी, तो तेल है वो उसमें, तो भाई वो मिट्टी के कण पकड़ेंगे ही। ऐसे ही भगवान के इस रोम राज्य में भगवान के शरीर पर करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड नाचते रहते हैं, एक जो है मिट्टी के कण के समान एक ब्रह्मांड है भगवान के लिए, ऐसा ये ब्रह्मांड है। वो ब्रह्मा जी पहले तो इसका सात विभाग किए थे, अब कहते हैं सात विभाग से भी पहले उन्होंने सबसे पहले किस प्रकार से चालू किया संसार को बनाना, कि उन्होंने सबसे पहले अज्ञान की सृष्टि बनाई। अज्ञान की सृष्टि कैसे, कि भी कोई भी काम करते हैं पहले ही पहले अज्ञानम पुरुतः भाति। बच्चे को हम लिखाएंगे तो सबसे पहले बच्चा स्लेट पर लिखना लगेगा, लाइन भी सीधी नहीं कर पाएगा, टेढ़ी मेढ़ी लाइन करेगा। फिर उसको ए सिखाएंगे तो ए में कैसा टेढ़ा मेढ़ा ए लिखेगा वो, फिर धीरे धीरे अभ्यास करते करते वो अच्छा बनाएगा। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई तो पांच अज्ञान, पांच प्रकार का अज्ञान था वो पहले बनाई। अब अविद्या अस्मिता राग और द्वेष ये सृष्टि बनाई, ब्रह्मा जी घबरा गए कि अरे ये मैंने मूर्खता पैदा की, मूर्ख ही मूर्ख सृष्टि हो जाएगी तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तब क्या हुआ कि उन्होंने भगवान का ध्यान किया, भगवान को याद करके किया। पहले पहले सृष्टि बनाई तो भगवान को याद नहीं किया, इसलिए कहते हैं हमारे शास्त्रकार कोई भी काम करो भगवान को याद करके करो, जहां भगवान को भूलोगे वही जो है मुश्किल हो जाएगी। भगवान को याद करो, घर से निकलो तो नारायण नारायण करके निकलो, घर में प्रवेश करो तो भगवान का नाम लो, नारायण नारायण करके भगवान के घर के अंदर प्रवेश करो। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, भगवान को भूल गए तो अज्ञान की सृष्टि बनाई, और जब भगवान को याद किया तो कौन सी सृष्टि बनी, सनकादि की सृष्टि बनी। ये सनकादि ऋषि बने, सनत सन सनक सनातन सनंदन और सनत कुमारी, चार जो है ये ब्रह्मा जी के बड़े ज्ञानी महापुरुष पैदा हुए। अब देखो चार महापुरुष तो पैदा हो गए इनके, लेकिन महापुरुष मिले ज्ञानी लोग मिले तो क्या करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए ना। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, सत्संग नहीं किया। अरे ये चारों पुत्र मिले इनके पास बैठ के सत्संग करो, सत्संग तो किया नहीं। तो उनको आदेश दिया कि बेटा तुम भी आगे सृष्टि बनाओ। तो उन्होंने कहा कि पिताजी हमारा तो सृष्टि बनाने का लक्ष्य ही नहीं है, हम तो देखते हैं कि सृष्टि के अंदर ज्ञान की प्राप्ति करो, स्वरूप का बोध करो, आप हमको ये बात क्यों बोलते हो। तो ब्रह्मा जी को बुरा लगा तो क्रोध आ गया। देखो ये क्रोध कब दूर होता है, सत्संग से दूर होता है, भगवान के भजन से दूर होता है। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया हो, अब वो क्रोध आया तो भाई अब क्रोध की सृष्टि तो होती वैसी ही होती है। अब जो है क्रोध की सृष्टि बहुत लंबी चौड़ी हो गई, तब ब्रह्मा जी घबरा गए कि अब क्या करें। तब उस क्रोध को तो उन्होंने एक जगह बैठा दिया कि तुम एक जगह रहो, उसका नाम रख दिया रुद्र, और उसको भी कह दिया तुम कोई प्रजा वर्जा का निर्माण मत करना, क्रोध की सृष्टि से तो बड़ा बड़ा खराब सृष्टि पैदा होगी, क्रोध से जो काम किया जाए वो बड़ा खराब होता है। इसलिए कभी भी क्रोध आ जाए, कभी क्रोध आ ही जाए तो उस समय किसी काम को मत करो, भोजन भोजन करने का समय तो भोजन मत करना, उस समय वो क्रोध के समय भोजन मत करना। क्रोध के समय में आप जल भी जल है उसको छिड़क सकते हो जो है आंखों पर, परंतु उस समय कुछ भी चीज स्वीकार मत करो, थोड़ी देर पश्चात करो। क्रोध के समय एक काम कर सकते हो, भगवान का नाम स्मरण करो, 100 बार गिनती करके भगवान का नाम ले सकते हो, क्रोध शांत हो जाएगा। बहुत उपाय है। प्रसंग दूसरा चल रहा है, तब वही ब्रह्मा जी ने फिर भगवान का ध्यान किया और फिर उसे मरीचि आदि 10 उनके पुत्र पैदा हुए। उनमें नारद जी महाराज थे ना, वो उत्संगात नारदो यज्ञ, नारद जी उनके गोद से पैदा हुए, और मरीचि अंगिरा पुलस्त्य पुलय क्रतु ये सब पैदा हुए, दक्ष उनके अंगूठे से पैदा हुआ, वशिष्ठ जी प्राण से पैदा हुए, और भृगु जी महाराज उनकी त्वचा से पैदा हुए, उनके हाथ से क्रतु पैदा हुआ, नाभि से पुलय पैदा हुआ, कान से पुलस्त्य पैदा हुआ, मुख से अंगिरा पैदा हुए, आंखों से अत्रि पैदा हुए, और मन से उनके मरीचि पैदा हुए। अब देखो ये ब्रह्मा जी का काम सृष्टि करने का है, तो उनके स्तन से धर्म पैदा हुआ और उनके पीठ से अधर्म पैदा हुआ, उनके हृदय से काम पैदा हुआ, उनके भौ से क्रोध पैदा हुआ, उनके होठ से जो है लोभ पैदा हुआ, ऐसे उनके अलग अलग अवयवों से अलग अलग चीजें पैदा हुई, छाया से कर्दम ऋषि पैदा हुए, ऐसे उनकी मन से और शरीर से सृष्टि बनी, उनकी वाणी से सरस्वती पैदा हुई। अब सरस्वती पैदा हुई तो देखो ध्यान से सुनना हो, ब्रह्मा जी सरस्वती को देखकर उसके पीछे पीछे जाने लगे, तो उन मरीचि आदि ऋषियों ने कहा कि महाराज ये क्या करते हो, आप अपनी पुत्री के पीछे जाते हो तो लोग इसका अर्थ का अनर्थ करेंगे। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि देखो मैं जो सरस्वती के पीछे जा रहा हूं इसका अर्थ कुछ और ही है, सरस्वती है वो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है और मैं कर्म का अधिष्ठात्री देवता हूं, तो ज्ञान के पीछे कर्म रहना चाहिए, ये प्रजा को सिखाना है, इसलिए मैं सरस्वती के पीछे जा रहा हूं। क्या नहीं महाराज, लोग अभी इस बात को समझने लायक बड़े नहीं है, लोग यही देखेंगे कि ब्रह्मा जी भी जो है हमारे सृष्टि के आदि प्रवर्तक, वो भी जो मर्यादा बनाने वाले हैं वे स्वयं ही मर्यादा से विरुद्ध करते हैं, आपके तात्पर्य को लोग समझेंगे नहीं, तो चलो छोड़ दिया उन्होंने। यदि वो सरस्वती के पीछे ही रहते तो देखो ज्ञान होता है ना, ज्ञान एक प्रकाश का नाम है और क्रिया है वो एक गति है, तो आगे प्रकाश हो और पीछे गति हो, आपकी जो मोटर है वो मोटर चलती है उसमें लाइट आगे रहेगी, ठेर तक आगे रहेगी, हजारों किलोमीटर चल लो भले ही मोटर दौड़ेगी खूब, लेकिन आपकी लाइट से आगे नहीं दौड़ेगी, लाइट से आगे मोटर दौड़ेगी तो खतरा हो जाएगा, आगे आगे प्रकाश रहेगा ताकि उसको गति को प्रकाश मिलता रहे। हमारे नारद हमारे ब्रह्मा जी इसीलिए दौड़ रहे थे सरस्वती के पीछे की मनुष्यों, क्रिया को करो तो ज्ञान को सामने रख के करो, बेवकूफी से काम मत करो, समझदारी से काम करो। परंतु मरीचि आदियों ने कहा कि महाराज इससे लोग अर्थ का अनर्थ लगाएंगे, आप इस बात को रहने दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने वो विचार छोड़ दिया। फिर ब्रह्मा जी वो बैठे हुए थे कि लोगों के लिए शिक्षा के लिए क्या करूं, तब उन्होंने यूं चारों तरफ देखा तो उनके चारों मुखों से चार वेद प्रकट हो गए, और जो वैदिक कर्म होता है वो भी उन्हीं से प्रकट हो गया, शास्त्र है, इज्ञा है, स्तुति स्तोम है और प्रायश्चित है, फिर आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और स्थापत्य वेद, ये भी उनसे पैदा हुए, इतिहास पुराण आदि ये भी उन्हीं से पैदा हुए, तरह तरह के छंद पैदा हुए, और साधुओं को कैसे साधु हुआ करते, साधुओं का ज्ञान उनसे पैदा हुआ, कि संत लोग भी कैसे होते हैं, कोई कुटीचर होते हैं तो कोई हंस होते हैं, कोई निष्क्रिय होते हैं, कोई अवधूत कोटि के होते हैं, कोई आचार्य कोटि के होते हैं, संतों में भी अलग 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 भेद होता है, अवधूत कोटि के संत होते हैं उनकी क्रिया हर किसी के समझ में नहीं आती, बड़े विचित्र होते हैं वो, और जो कुटीचर होते हैं उनका हर व्यवहार लोगों के लिए एक आदर्श होता है, भीतर में तो सब एक जैसे ही है परंतु हर का अलग अलग होता है। फिर गृहस्थ के धर्म बताए, दंड नीति राजाओं की बताई, ऐसे करके सब विद्या वगैरह बनाई उन्होंने, और छंद बनाए, स्वर बनाए, परंतु फिर भी उनको संतोष नहीं हुआ, तब उनके शरीर से उन्होंने संकल्प करके एक स्त्री को बनाया, एक पुरुष को बनाया, जो पुरुष था उसका नाम था मनु और जो स्त्री थी उसका नाम था शत्रुपा। और उन दोनों को कहा कि भाई अब तुम देहज सृष्टि बनाओ, इतने दिन तक मैंने संकल्प से सृष्टि बनाई, अब तुम संकल्प भी करो और अपने देह से भी सृष्टि का निर्माण करो। तब देह से सृष्टि का निर्माण करने पर उनके दो लड़का और तीन लड़कियां हुई, पांच संतान हुई, प्रियव्रत और उत्तानपा दो तो लड़का हुए, देवहूति आकुति और प्रसूति तीन उनके लड़कियां हुई। ये समझो परीक्षित की ये सब का सब जगत है, ये इन पांचों से भरा पड़ा है, ये सब इन्हीं से ही पैदा हुआ हुआ है। विदुर जी ने कहा महाराज मनु महाराज को जब बनाया तो फिर मनु जी ने क्या ब्रह्मा जी से निवेदन किया, मनु जी का चरित्र मुझे विशेषता से समझाओ। तो मैत्रेय जी महाराज कहने लगे कि देखो जिस समय में मनु और शत्रुपा का निर्माण हुआ और मनु और शत्रुपा को ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाने का आदेश दिया, तब मनु ने बड़े नम्रता से ब्रह्मा जी के सामने बात रखी। देखो एक पिता और पुत्र का कैसा विचित्र भाव होता है, इसको थोड़ा देखिएगा। तो पिताजी के सामने आकर के नम्रता से मनु जी ने पूछा कि हे पितृचरण, मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है, आप मुझे क्या आदेश देते हैं, मैं उस आदेश को पूरा करने के लिए आपके सामने तैयार हूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा किसी भी पुत्र के लिए इससे बढ़कर कोई साधना नहीं है कि वो पिता की आज्ञा के पालन में तत्पर रहे, सबसे पहली साधना है। माता पिता की आज्ञा का पालन है, ये सबसे बड़ी साधना है। पिता के लिए नहीं, पुत्र के लिए पिता की बात मानना ये एक नंबर का काम है, भगवान के भजन से भी बढ़कर है काम। तुमने जो इस प्रकार से नम्रता से कहा है मैं इससे बहुत खुश हुआ हूं। अब देखो ये पृथ्वी है, अब तुम जो है सृष्टि पर विस्तार करो और भगवान के लिए यज्ञ वगैरह करो। तो मनु ने कहा महाराज यज्ञ करने की जगह तो चाहिए पृथ्वी, और करने वाले मनुष्य होंगे वो भी पृथ्वी पर ही रहेंगे, और पृथ्वी अभी रसातल में गई हुई, क्या करें हम। तब जो है ब्रह्मा जी के मनु जी के वचनों को सुनकर के ब्रह्मा जी विचार में पड़ गए। अब कोई उपाय नहीं आया, ब्रह्मा जी उस ध्यान में बैठ गए, भगवान का यू ध्यान करे हे भगवान अब क्या करूं, मैंने मनु को आदेश तो दे दिया लेकिन रहेंगे कहां, धर्म तो धर्म की जगह तो केवल पृथ्वी है, और पृथ्वी रसातल में गई हुई है, राक्षसों ने उसको कब्जे में कर रखा है, अब क्या करें महाराज, मेरे तो बस की बात नहीं है। ऐसे करके वो भगवान का यू ध्यान करने लगे। देखो भागवत है ना, ये ध्यान प्रधान पुराण है। ये शुरू शुरू में कह दिया कि सत्यम परम धीमहि, वहां से ये चालू हुआ हुआ है। तो ध्यान करो भगवान का, ध्यान करने का क्या फल हुआ कि भगवान उनके श्वास में से नाक से बाहर सुअर बनकर के आ गए, भगवान उसी समय में उनके सामने सुअर बनकर के आए, अंगूठे जितने आए पे नाक से, देखते देखते पर्वताकार हो गए, बड़े विशाल पर्वत के समान। अब देखो बातचीत नहीं हुई, ब्रह्मा जी से कोई बात नहीं की भगवान ने, लेकिन देखो अपन देखते हैं भगवान के दर्शन हो, अरे भगवान के दर्शन तो ब्रह्मा जी ने भी किए, लेकिन भगवान ये आकर कभी नहीं कहेंगे कि देखो ये मैं भगवान हूं अब तुम मुझे मेरे से मिल लो, ऐसा नहीं कहेंगे भगवान। भगवान तो यही कहते हैं कि भाई तुम्हारे में अकल है तो पहचान लो। क्या विचित्र बात है। तो ब्रह्मा जी यू देखते रहे, भगवान को देखते रहे, वरा भगवान को, सुअर भगवान को देखते 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 जब वो विशाल आकृति में आ गए, तब उनके मन में आया अपिस्मित एष भगवान, क्या ये भगवान है, ऐसा उनके मन में आया। ओहो ये वही भगवान हो सकते हैं, इतने में तो वो ऊंचे उठ गए, वरा भगवान बहुत ऊंचे उठ करके आकाश में गए, आकाश में जाकर उन्होंने जोर से गर्जना करी, प्रतिस्वनयता विभू, बहुत जोर से आवाज की, उस आवाज से सब कांपने लग गए। जन लोग, तप लोग, सत्य लोग, वहां पर रहने वाले ऋषि मुनि, वो सब ब्रह्मा जी की आवाज सुनिए, वराह भगवान की आवाज सुनकर के हर्षित हो गए, और जो भगवान से विरोध करने वाले थे वे सब कंपित हो गए। भगवान ने जोर से अपने जटाओं को यूं फड़फड़ा, तो फड़फड़ाने से उनके जो शरीर पर जो रोमावली थी वो रोमावली गिरी। वो रोमावली देखो ये डूब के नाम से है, अभी डूब के नाम से। सब लोगों ने कहा योगेश्वर पाहि मामिति, हे महाराज, हे योगेश्वर, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अब ऐसा करके ब्रह्मा जी ऊपर जाकर के आकाश में से जाकर फिर जोर से समुद्र में कूद गए, और समुद्र में कूद करके नीचे ही नीचे जाकर उस पृथ्वी को खोज लिए, और पृथ्वी को अपने दांतों के ऊपर रख करके ऊपर ले आए। बीच में एक दैत्य मिला, उस दैत्य के साथ में युद्ध हुआ, और भगवान तो भाई उस दैत्य से इस पृथ्वी को बचा लिए और ला करके समुद्र के ऊपर इसको रख दिया। अब भगवान की सब स्तुति करने लगे। अब एक बात सुनो, देखो, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान वराह क्यों बने? क्योंकि पृथ्वी पर जितने प्राणी हैं, सब प्राणियों में एक वराह प्राणी ऐसा है कि जो पृथ्वी से बहुत घनिष्ठ संबंध रखता है। इतना घनिष्ठ संबंध किसी का भी नहीं है। सुअर को आप देखिए, उसका मुंह है ना, यू हरदम पृथ्वी पर यू घसीटता घसीटता ही चलेगा। उसका कान है, यू नहीं, कान यू पृथ्वी की तरफ भी झुका हुआ है। सुअर के आप नेत्र देखिए, नेत्र यू जमीन के ऊपर ही हुई, उसके हर अवयव उसी में ही रहते हैं। और वो सुअर जो है थोड़ा मिट्टी खोद करके उसके अंदर जाके चिपक के बैठता है, और सुअर इस पृथ्वी की सारी गंदगी को साफ करने में जो है आनंद का अनुभव करता है। सुअर का इस पृथ्वी से बहुत गहरा संबंध है, इस कारण से भगवान सुअर बने। और जब सुअर बने तो अब यज्ञ करना था पृथ्वी का, तो यज्ञ करने के जितने भी पात्र हैं, चाहे तमस हो और चाहे दूसरे पात्र हो, वे सारे के सारे पात्र हैं वो सुअर के शरीर की जैसी आकृति के हैं। इतना लंबा रहा घी डालने के लिए, यहां से घी डालते वहां तक जाता है वो सुअर के शरीर के अवयव जैसे ही यज्ञ पात्र होते हैं। ये सब देख करके ऋषि मुनि आए, कहने लगे महाराज, आपने पृथ्वी का उद्धार किया, ये आप ही कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता। कै शब्द दीत है, किसमें दूसरे में सामर्थ्य है कि इस पृथ्वी का कोई उद्धार करे? महाराज आपने इसका उद्धार कर दिया, पर हमको तो कोई अचंबा नहीं होता है। क्यों, क्या अचंबा? आपके लिए कौन सा कठिन काम था? आश्चर्य तो वह हो ना जब कोई आपके लिए भी कठिन हो और आप काम कर दे। बस महाराज आपने जो है पृथ्वी का उद्धार किया, हम जन लोक वाले, तप लोक वाले, सत्य लोक वाले आपके इन बालों के जल से अपने आप को बहुत पवित्र मानते हैं। विमृज्यमाना वृषमीश पाविता है, भगवान जो है पृथ्वी को रख दिए और सबसे वे इस प्रकार से आनंदित होकर के और भगवान वहां से चले गए। विदुर जी महाराज ने फिर आगे प्रश्न किया कि महाराज देखो, आपने नाम नहीं लिया उसका, जो राक्षस था उसका नाम तो था हिरण्याक्ष, वो आदि दैत्य है, और वराह भगवान ये आदि अवतार है, इसलिए महाराज आप हमको इस आदि दैत्य के विषय में बताओ और आदि वराह के विषय में भी बताओ, सब कथा आप हमको पूर्ण रूप से कहो। कस्माद हेतो रभुन मृद है, ये उस वराह का और आदि दैत्य का, हिरण्याक्ष का कैसे युद्ध हुआ, क्यों युद्ध हुआ, ये हमको विशेषता से बताओ। मैत्रेय जी कहते हैं साधु वीर त्वया पृष्ठम, बहुत अच्छी बात पूछी। अब देखो थोड़ा ध्यान से सुनना, अब विशेषता से सुनना आप लोग। मैत्रेय जी महाराज अब आगे कथा बताते हैं कि ये एक ऐसी कथा है कि जो मनुष्यों के मौत के भय को दूर करने वाली कथा है। एक बार की बात है, देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि महाराज ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इन दो के अत्याचारों से तो हम बहुत दुखी हो गए, इनके पास ताकत भी ज्यादा ना, तो हम इनसे लड़ सकते हैं और ना हम इनको पाप से रोक सकते हैं, और पृथ्वी है वो रसातल में गई हुई है, ऐसी स्थिति में कोई धर्म करने वाले भी नहीं है, कोई यज्ञ करने वाले भी नहीं है, और यज्ञ वगैरह नहीं होगा तो हमको ताकत भी मिलने वाली नहीं है। हमको तो ताकत पृथ्वी से ही मिलती है, जब पृथ्वी पर धर्म होता है तो हम लोगों को बल मिलता है, और ये असुर हैं वो यही चाहते हैं कि पृथ्वी पर धर्म न हो, धर्म हो जाएगा तो हम लोगों की शक्ति कम हो जाएगी। तो हम तो बड़े दुख में पड़ गए महाराज, ये क्या है क्या है, ये दोनों में इतना बल कहां से आया, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप में जरा बताओ तो सही। तो ब्रह्मा जी ने उन देवताओं से कहा कि अरे सुनो सुनो, बड़ी विचित्र बात है। एक बार की बात है कि कश्यप जी की जो पत्नी है दिति, वो अपने पति के पास जाकर कहने लगी कि देखो महाराज, मेरी सौत है अदिति, उसके तो देवता बहुत पहलवान, बड़े शूरवीर और बड़े श्रेष्ठ पुत्र हैं, मेरे तो कोई पुत्र है नहीं, मेरे भी पुत्र होना चाहिए, और हम लोग जो दक्ष की कन्याएं थी, हम 13 कन्याएं थी, 13 कन्याओं ने एक साथ आपको स्वीकार किया था, तो आप जैसा हमको पति मिल गया और फिर हमारे पुत्र न हो और हमारे सौत के पुत्र हमारे पर शासन करें, तो महाराज ये तो हमारे लिए कितने कष्ट की बात है, तो कोई ऐसा उपाय करो कि जिससे मेरे पुत्र हो और वो अदिति के बेटों को ऊपर विजय प्राप्त करने वाले हो। ये संध्या के समय में बात कही। ये बात सुनकर के वे कश्यप जी महाराज बड़े दुखी हो गए। कश्यप जी महाराज ने कहा कि अरे दिति, ये तुमने किस समय में क्या बात कही है, ये संध्या की जो वेला होती है ये विशेषता से भगवत स्मरण की वेला होती है, इस समय में थोड़ी देर भी किया हुआ भगवान का नाम जो बहुत काम आता है, और इस समय में यदि लौकिक इच्छाएं करोगे तो वो भी बहुत जो है कष्ट देने वाली होगी। यह तो एक उपजाऊ समय है, तुम संसार को यदि चाहोगे तो संसार की चाहना बढ़ेगी, और भगवान की चाहना करोगी तो भगवान की चाहना बढ़ेगी। तुम्हें ये पुत्र वगैरह कहां से याद आ गया, तुमने गृहस्थाश्रम के लिए क्या सोचा है, ये गृहस्थाश्रम है ये भोग भोगने के लिए नहीं है, ये गृहस्थाश्रम संसार के दुखों से छुड़ाने के लिए एक नौका के समान है, संसार रूपी सागर है, इस सागर में नौका के समान है ये गृहस्थाश्रम। क्यों? क्योंकि यामाश्रितेन्द्रिया रातिन दुर्जयान इतराश्रम ही, कई कई ऐसी भोग की इच्छाएं होती है जिनको मनुष्य भोगे बिना रह नहीं सकता है, अपने को असमर्थ पाता है, तो उन भोगों का ठीक भोग करके धर्म पूर्वक भोग करके और भोगों से ऊपर उठ जाए, इसके लिए गृहस्थाश्रम है। क्योंकि वयम जवेन हेलावीर दस्युन दुर्ग पतिर यथा, जैसे कोई डाकू है चोर है उनको जीतना है तो किले के अंदर बैठ करके सुरक्षित रह करके शस्त्र चला करके उन डाकुओं को जीता जा सकता है, तो गृहस्थाश्रम एक किला है, न्याय पूर्वक भोग भोगने से मनुष्य को वैराग्य होगा और विषय से ऊपर उठ जाएगा। रामायण में भी लिखा है कि धर्मते विरति जोगते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, धर्मते विरति धर्म पूर्वक जो भोग भोगा जाता है उससे वैराग्य होता है। तो तुमने गृहस्थाश्रम ये समझ ला कि भोग करो और आनंद करो और सुख भोगो, इसके लिए गृहस्थाश्रम नहीं है। न वयम प्रभुवस्ताम, ये गृहस्थाश्रम इसके लिए अपने लिए नहीं है। ये गृहस्थाश्रम विषयों से ऊपर उठने के लिए, और उसमें भी संध्या के समय में तुम बेटा बेटी की इच्छा करती हो। ये समय तो भाई भगवान शंकर का समय है, भगवान शंकर के अनुसार इस समय में बड़े सजग होकर एक एक को देखा करते हैं। भगवान शंकर के विषय में तुम्हारे मन में ये संदेह नहीं होना चाहिए कि भाई वो तो भूतराट है, भूतों के बीच में रहने वाले हैं। और स्मशान चक्रा नील धूम धूम्र विकीर्ण विद्युत जटा कलाप भस्मा वकुंठा मलम रुक्म देहो देवस्त्रिभि पश्यति देवरस्ते, वो तो मसानों की राख लगाए हुए है। ये ऐसी बात नहीं है, वो सबके कर्म को देखने वाले हैं, किसी के साथ उनका पक्षपात नहीं है। उनका आदर करो, इस वेला का आदर करो। भगवान शंकर को देख करके मूर्ख लोग ही हंसते हैं और श्रेष्ठ पुरुष तो उनके चरणों में लगी हुई धूलि को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। बड़े पुरुषों का चरित्र होता है हर किसी की समझ में नहीं आता। अहो विभूमनश चरितम विडम्बनम, बड़े पुरुष किस समय क्या करते कुछ पता नहीं चलता उनका। इसलिए शंकर जी का आदर करो और तुम जो है ये पुत्र की इच्छा छोड़ो। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि वो दीति तो इस बात को समझी भी नहीं, खूब समझाया गया, और वो उसने अपनी लज्जा अपना संकोच सब कुछ वो भूल गई। तब वो हमारे कश्यप जी ने भगवान का ध्यान किया। ध्यायन जजाप विरदम ब्रह्म ज्योति सनातनम, पर ब्रह्म परमात्मा सर्व प्रकाशक, उनका उन्होंने ध्यान किया। अब दीति को बड़ी लज्जा आई। दीति ने उस समय में कश्यप जी से प्रार्थना की कि महाराज मेरा गर्भ है, ये गर्भ वास्तव में भगवान शंकर का कोप भाजन नहीं बनना चाहिए। मैत्रेय जी महाराज बोलते हैं कि कश्यप जी संध्या वंदना का नियम करने के बाद कहने लगे कि देखो हमने तुमको इस समय का दोष पूरा बता दिया था और तुमने हमारा निर्देश माना नहीं, और तुम अपने लज्जा और संकोचशील सबको छोड़ करके तुमने भगवान शंकर का एक अपमान ही किया है। इस अपमान के कारण से तुम्हारे दो भयंकर लड़के पैदा होंगे और सारे संसार में भयंकर उपद्रव मचाएंगे। तब इस विश्वेश्वर भगवान स्वयं अवतार लेंगे और तुम्हारे दोनों पुत्रों को वो मारेंगे। दीति ने कहा कि भगवान के द्वारा मरे तो कोई हर्जा नहीं है, पर किसी महापुरुष का कोप उन पर नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण के द्वारा न मरे, चाहे वे भगवान के द्वारा मर जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, मुक्ति हो जाएगी, पर किसी ब्राह्मण का शाप हो, संतों का शाप हो, तो ये मैं नहीं चाहती। कश्यप जी ने कहा कि देखो तुमने शोक किया, पश्चाताप कर लिया, मनुष्य से गलती होती है, पर गलती होने के बाद वो उस गलती के आधार पर पश्चाताप कर लेता है, तो भाई वो भी एक गलती को सुधारने का तरीका है। और भगवती उरु मानाक्ष, तुम भगवान से भी डरी? नहीं तो जो आदमी भोगों में फंसा होता है वो आदमी भगवान से डरता नहीं है, वो भगवान को मानता ही नहीं है, भोग की लिप्सा में वो अंधा हो जाता है। लेकिन तुमने भगवान पर विश्वास किया कि भगवान से भले ही मरे तो भाई इसका भी कोई न कोई फल तो मिलेगा ही, तुम्हारे एक बहुत अच्छा पौत्र होगा, वो भगवान का बड़ा भक्त होगा, उसमें निर्वैरता आदि सब गुण रहेंगे और निवेश वैकुंठ मिमम विहास्यति, और वो जो है संसार को छोड़ेगा तो सीधा वो वैकुंठ में जाकर निवास करेगा, उसका कोई शत्रु नहीं होगा, ऐसा तेरा पौत्र होगा। द्वितीय ने कहा ठीक बात है। अब द्वितीय ने विचार किया कि मेरे पुत्रों से संसार में अनर्थ होगा, तो वो अनर्थ न हो इसलिए क्या किया, उसके पेट में बच्चे थे उनको 100 वर्षों तक अपने अंदर ही रखा, उनको बाहर ही नहीं आने दिया कि बाहर आएंगे तो पुत्र अनर्थ पैदा करेंगे ही। पेट के अंदर रखे रखे 100 वर्ष हो गए, कहते इतने वर्ष तक कैसे पेट में रख लिया, ये असुरों के पास में एक शक्ति है। और प्रहलाद जी के प्रसंग में आप सुन लेंगे कि जो कयादु थी प्रहलाद जी की मां, उसके पास भी शक्ति थी कि इच्छा प्रसूति जब उनके मन में आएगी ना तभी लड़का होगा, नहीं तो लड़का पेट में रहेगा। ऐसे थे वो असुरों के पास में शक्तियां, ऐसी शक्तियां थी उनके पास। तो दिति ने 100 वर्ष तक गर्भ को बाहर आने ही नहीं दिया। देवता लोग घबराए, ब्रह्मा जी घबराए, देवता लोग गए ब्रह्मा जी अब क्या करो, यदि ये बच्चे पेट में ही रह गए तो इनके तपस्या के प्रभाव से संसार में अंधेरा हो रहा है, और यदि ये बेटे बाहर आ गए तो हमारे बड़े मुश्किल हो जाएगी। दोनों तरफ ही मुश्किल है, इधर पढ़ो तो कुआ है, इधर पढ़ो तो खाई है। तो क्या कुआ और खाई में से बाबा खाई फिर भी ठीक है, कुआ तो एकदम ही जानलेवा होता है, कितना गहरा होता है। इधर कुआ और इधर खाई, इसमें से खाई को भले करो, खाई तो कम से कम कम गहरी होती है। तो महाराज अब क्या बताएं, हमारी आप रक्षा करो, कोई उपाय है तो बताओ। देखो देवता लोग कभी भी आफत आई ना तो भगवान के पास गए, और तीसरे स्कंद में आए हैं तो ये क्या है, ये ब्रह्मा जी के पास आए। क्यों भाई आप भगवान को क्यों भूल गए, कि यहाँ ये सृष्टि का जो स्कंद है, ये सृष्टि स्कंद है और सृष्टि में मुख्य ब्रह्मा जी आते हैं, इसलिए देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी से जब इनका काम नहीं बनेगा तब अभी आगे भगवान की स्तुति करेंगे। तो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने हाथ झड़का दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई मेरे तो बस की बात नहीं है, ये दोनों कौन है ये मैं जानता हूं कि महाराज ये दोनों कौन है, कि भाई देखो मेरे बेटा सनकादि ऋषि एक बार बैकुंठ में गए और वहां पर एक नैश्रेयस नाम का बड़ा सुंदर उपवन जंगल है, उस जंगल में तरह तरह के तो वृक्ष है, तरह तरह के वहां पर फल है, तरह तरह के पक्षी है, और वहीं पर एक बहुत सुंदर तलैया है, उस तलैया पर लक्ष्मी जी आती है और लक्ष्मी जी आकर के अपना मुंह धोती है, और वो तलैया इतनी बढ़िया मीठी जल वाली, उस तलैये से वहां की शोभा बड़ी निराली होती है। क्या बताएं, जो भगवान की कथा नहीं सुनते हैं उनको तो वो वैकुंठ मिलता नहीं है, और जो भगवान की कथा सुनते हैं वे उस वैकुंठ को प्राप्त हो सकते हैं। ऐसा विलक्षण ये वैकुंठ था, वहां पर ये मेरे चारों बेटा पहुंच गए। चारों बेटा 6 मार्ग पार कर लिए। पहले मार्ग में कोई रोक टोक होती तो कोई बात नहीं थी, पर 6 मार्ग उन्होंने 6 पिरोड़ पार कर ली। 6 पिरोड़ पार करने के बाद तो उनको कोई रोकना नहीं चाहिए था, पर वहां जय और विजय नाम के 2 पहरेदार थे, उन्होंने लकड़ी से उनको रोक दिया। कितनी बढ़िया बात कही है वो, और कितनी गूढ़ बात कही है कि षडसज्जमाना तस्मिन् नतीत्य मुनये षडसज्जमाना। 6 दरवाजों में कहीं रोका टोकी नहीं हुई, कहीं पर वो आसक्त नहीं हुए, सीधे चले गए। ये 6 दरवाजे क्या है वो? ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, इनको जो जीत लेता है वो 6 को जीत लेता है, वो बैकुंठ के 6 पिरोड़ है, उन पिरोड़ों से पार कर जाता है। 6 में कहीं भी अटक गया तो बैकुंठ तो नहीं मिलेगा, और हमारे सनकादि ऋषि उन 6ों को बड़े आसानी से पार कर गए। शब्दाशक्ति, रूपाशक्ति और जो है गंधा शक्ति रस और रसा शक्ति स्पर्शा शक्ति ये सब आसक्तियां मिट गई और मन के अंदर कोई उनके किसी प्रकार की कोई स्प्रिया भी नहीं रही। ऐसे उन्होंने 6 पिरोल पार कर ली और वहां पर उनके सामने जय और विजय आए। जब जय और विजय आए उन्होंने आकर के उनको रोका तो भाई अब जो है हमारे पुत्रों को क्रोध आ गया। आप देखना सनकादि ऋषियों का कहीं पर भी क्रोध आने का प्रश्न ही नहीं है। आज बैकुंठ में क्रोध आ गया, बैकुंठ में क्रोध आया उनको, और वो भी 6 दरवाजों को पार कर लिया तब क्रोध आया। अब थोड़ा यहां पर सोचिए कि ये क्रोध क्या चीज थी, ये जो क्रोध वृत्ति आई ये क्रोध वृत्ति क्या थी। सनकादि ऋषि कोई अपमान के ढंग से क्रुद्ध हुए क्या कि हमारा तुमने अपमान कर दिया? वो मान अपमान से तो ऊपर उठे हुए थे ही। देखो जो भगवान की भक्ति पर चलता है ना, सबसे पहले वो मान से रहित होना जरूरी है। मान किसका होता है? शरीर का होता है। और जो शरीर से ऊपर उठा हुआ होता है उसका शरीर का मान करो चाहे अपमान करो कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना फर्क पड़ता है उतनी आ सकती है। उनका शरीर में तो कोई अहम भाव था ही नहीं, फिर उनको क्रोध क्यों आया? ये एक सोचने की बात है। तो ये क्रोध उनका अपमान से नहीं आया, उनके मन में भगवान की भक्ति थी, वे भगवान के दर्शन करने जाना चाहते थे। तो भगवान के दर्शनों में भगवान के धाम में जो बाधा डाली गई वो भगवान के भक्तजन उस बाधा को सह नहीं सके। हमारे भगवान से मिलने में तुम क्यों बाधा डालते हो? इस बात से उनके मन में क्रोध आया। क्रोध भी कहते हैं क्रोध, वास्तव में तो उनके भगवत विरह जगा, भगवत विरह। बताया ना कि भगवान के विरह के बिना भक्ति कभी पुष्ट होती नहीं है। तो अन्वय दृष्टि से तो उन्होंने बड़ी तपस्या की, व्यतिरेक बुद्धि से यहां बैकुंठ में उनके भक्ति में थोड़ी दर्शनों में बाधा आई, तो बाधा आने पर उनके मन में ये विरह हुआ, क्षोभ हुआ, और वही क्रोध का रूप धारण कर लिया। और उन्होंने उस समय उनको फटकारते हुए कहा कि अरे तुम भगवान की सेवा करते हो और तुम्हारे अंदर ये विषम स्वभाव कैसे आया कि तुम नंग धड़ंग थे? अरे नंग धड़ंग होगा वही भगवान के पास जा सकता है। नंग धड़ंग क्या? नंग धड़ंग माने जिसका अपना करके कुछ नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात है कि भगवान के वहां तो नंगा ही जाएगा, संकोच नहीं रखेगा, लज्जा नहीं रखेगा। वो कहेगा हे भगवान मैं तो जन्म जन्मांतर का पापी हूं, मुझे तो आप सब जानते हो। मां के सामने जैसे बच्चा नंगा ही रहता है, ऐसे वो भगवान का भक्त होता है वो तो नंगा ही रहता है। तुम हमको नंगा समझ करके भगवान के यहां जाने में बाधा डालते हो। नग्न ही भगवान के पास जाता है। शील संकोच मर्यादा ये प्रेम में नहीं चलती। वहां शील संकोच मर्यादा का त्याग है, ये बहुत बड़ी मर्यादा है, बहुत बड़ा शील है, बहुत बड़ा संकोच है, क्योंकि ये अपनों के साथ में नहीं होता। आदमी अपने आप से खुद से जिस प्रकार से संकोच नहीं करता, ऐसे वो भगवान भी तो अपने आप में ही तो है। भगवान से दूरी नहीं मानी, इसलिए भगवान और वो सनकादि ऋषियों ने अपना आपा वो एक ही माना है। तो वहां पर क्या तो ये नंगे की बात करते हो और क्या तुम वस्त्र की बात करते हो? तुमको यहां रखा किसने है? तुम ऐसे शांत परब्रह्म परमात्मा के यहां रहते हुए और ऐसा विषम स्वभाव बना के रखते हो? तुम्हारे अंदर भेद है, उधर भेद ही भयम यतोस्य। आपके अंदर जो भेद बुद्धि है, भय बुद्धि है, तभी तो आपको हमारे अंदर भय दिखाई दिया, हमारे अंदर भेद दिखाई दिया। अपने अंदर का दोष ही व्यक्ति दूसरों पर देखता है। तुम इस लोक में रहने के लायक नहीं हो, चले जाओ यहां से, 3 जन्म तक तुम असुर योनि में पड़े रहो। ये उनकी बात थी। साप था उनका, उम्र भर संकादिकों ने कभी साप नहीं दिया। उम्र भर कभी आप कोई चरित्र ले आओ संकादिकों का, कभी क्रोध नहीं किया। बैकुंठ में जा, बैकुंठ में गए तो भगवान के तो ज्यादा नजदीक गए थे ना, वहां क्रोध क्यों किया, तो साप दे दिया। अच्छा, ये साप देने के बाद उनके मन में जलन होनी चाहिए थी, जयर विजय को बुरा लगना चाहिए था। हम आपको यदि कुछ आपके अपमान के विरुद्ध बात, सम्मान के विरुद्ध बात कह दें, आपको अपमानित कर दें, तो आपको भाई शांत भाव से बैठे क्रोध आ जाएगा। यहां क्रोध यदि भीतर की क्रोध वृत्ति से क्रोध होता, मतलब वैकारिक क्रोध होता, तो जय और विजय भी वापस में उनके क्रोध ही करते। पर जय और विजय ये साफ सुनते ही उनके चरणों में गिर गए, चरणों में गिर गए, और चरणों में गिर करके पादक ग्राहु अपततम अतिकातरेण काय, बहुत ही घबराए हुए उनके चरणों में गिर करके कहने लगे कि महाराज बहुत अच्छा किया, ये साप दिया आपने। क्रोध वृत्ति से बात निकलती है, उसका कोई समर्थन नहीं करता हो, ये भगवान की भक्ति के विरह में निकलने वाली बात थी। वो भी समझ गए कि ओहो हमसे गलती हो गई, हम पहचान नहीं सके भक्तों को। वो चरणों में गिरकर कहने लगे महाराज बहुत ही अच्छा किया आपने, दंड दिया भूया नगोनी भगवत भी रकारी दंड है, भगवत भी दंड है अकारी, ये जो आपने किया ये बहुत ही अच्छा किया है। क्यों कि आइंदे ऐसा कोई भी व्यक्ति आप जैसे महापुरुषों के साथ अपराध नहीं करेगा। एक बात महाराज, एक कृपा भी कर दीजिए, आपने क्रोध तो किया है, थोड़ी कृपा कर दीजिए, हमसे गलती तो हो गई। कृपा यही है कि भगवत स्मृति नो मोहो भवेद हेतु तो नव ब्रजतो रदोदय, तीन जन्म तक असुर योनि में तो पड़े रहेंगे कोई बात नहीं है, पर हमको भगवान की याद आती रहनी चाहिए। भगवान के दर्शन नहीं मांगे, भगवान की याद मांगी, याद भगवान की याद आती रहे। देखो याद है ना, ये भगवान के दर्शनों से लाख दर्जा ऊंची चीज होती है। भगवान के दर्शन तो भाई भगवान के हाथ में देवो मत देवो, लेकिन भगवान की जो याद है वो तो हमारे हाथ की चीज है ना। भगवान की याद हमारे अंदर रहनी चाहिए, ऐसा उन जय और विजय ने वरदान मांगा। अब देखो उन्होंने हां और ना कुछ नहीं कहा सनकादि ऋषियों ने, इतने में ही भगवान ने सुना कि अरे कोलाहल हो रहा है, ये प्रसंग इतना गहरा इतना मधुर लगता है, ये इस प्रसंग के अंदर आ जाने के बाद निकलने का मन नहीं करता, ऐसा विचित्र प्रसंग है ये। एवं तदैव भगवान अरविंद नाम है स्वाना विबुद्धि सदति क्रममार्य हृदय है, जिनका हृदय बहुत कोमल है, बड़े दिव्य गुणों से भरा हुआ है, उन भगवान ने देखा कि अरे अरे सद अतिक्रमम, मेरे यहां वैकुंठ में संतों का अपमान हो गया, यह वैकुंठ है ही संतों का, ये बैकुंठ मेरा थोड़ा ही है, ये तो संतों का बैकुंठ है, यहां तो संतों का मन चलेगा, हमारा मन नहीं चलेगा, संतों का अपमान हो गया। तो भगवान उसी समय में लक्ष्मी जी को साथ में लेकर के सनकादिकों के पास चले स्वागत करने के लिए, उनकी अगुवाई करने के लिए चले। अब ध्यान देना लक्ष्मी जी को साथ में क्यों लिया, लक्ष्मी जी को तो लिया सो लिया, गरुड़ को कहा गरुड़ तुम भी चलो, महाराज कहीं बैकुंठ के बाहर चलना हो और कहीं उड़ना हो डरना हो वहां तो ठीक है, बैकुंठ के अंदर ही आप यानी मेरे साथ चलो। तो वो गरुड़ है, गरुड़ को भगवान ने साथ में लिया और गरुड़ के पीठ पर यूं हाथ रखा, गरुड़ साथ साथ में पैदल पैदल ही चल रहा है, भगवान को गरुड़ पर बैठे नहीं, पैदल पैदल ही, क्यों, कैसी कृपा है भगवान की। भगवान कहते हैं देखो गरुड़ तुमको कई बार अभिमान हो जाता है, अभिमान करोगे बैकुंठ में तो जय और विजय जैसी दशा तुम्हारी न हो जाए, सावधान रहना। लक्ष्मी जी को साथ में लिया, क्यों लिया कि लक्ष्मी जी ने भगवान से निवेदन किया कि हमारे लिए बैकुंठ बनाओ, एक रहने की जगह बनाओ। भगवान ने कहा कि देख लक्ष्मी, बैकुंठ हैकुंठ के चक्कर में मत पड़ो कि नहीं बनाना ही पड़ेगा। क्यों कि ये बेचारे मेरे भगत लोग हैं, ये बहुत कष्ट पा करके आपकी आराधना करते हैं, भयंकर गर्मी में आते हैं, कथा सुनते हैं और जीवन में भी बहुत कष्ट सहन करते हैं। कोई बेचारे गरीब है तो कोई अपने परिवार से हीन है, कोई दुखी है, कोई कैसे है, उसमें भी समय निकाल निकाल करके बेचारे भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, कथा सुनते हैं, आपका नाम लेते हैं। तो जिस समय इन्होंने साधना की उस समय ऐसा कोई भगत नहीं है कि जिसने कोई कठिनाई न उठाई हो। और जब आप उनकी साधना पूरी हो जाए और वो उस कठिनाई को भोग चुके हैं, अब महाराज उनकी सेवा शुश्रूषा उनको ऊंचे स्थान पर रख करके सुख देने का तो काम होना ही चाहिए ना। तो जैसे ये भक्त आपके बच्चे हैं ऐसे ही मेरे भी तो बच्चे हैं। तो देखो ये माँ का भाव है, माँ है वो खुद दुख पालेगी पर बेटों को कभी दुख नहीं दे सकती, भूखा नहीं रख सकती, दुखी नहीं देख सकती। तो भगवान ने कहा ठीक है बसा लो बैकुंठ। तो भगवान ने ये बैकुंठ बसाया, लक्ष्मी जी को साथ में लिया और बताया मैंने मना किया था ना कि बैकुंठ मत बसाना। अब देख यहाँ बैकुंठ में लड़ाई झगड़ा होता है, यहाँ भी कलह होता है। तो लक्ष्मी जी को साथ में लिया। अब देखो लक्ष्मी जी को साथ में लिए और भगवान ने अपना बड़ा अच्छा श्रृंगार किया अपने ही घर में, खूब बढ़िया। तो उनका मुकुट जगमगा रहा है और वनमाला उनके गले में सुशोभित हो रही है। प्राय आप अपने अपने घरों में देख लो, घर में आदमी रहता है ना तो इतना यू साफ यू सब सुसज्जित होके नहीं रहता है, घर में ऐसे ही रहता है। लेकिन भगवान अपने ही घर में अपने ही लोगों से मिलने के लिए जा रहे तो मुकुट लगाया और भगवान ने वनमाला पहनी। वल्गु प्रकोष्ठ वलयम विनतान सुतान से हाथ में खूब अच्छा कड़ा वगैरह पहना और मैं और जो है उसके कंधे पर हाथ रखा और विन्य सहस्त्र मित्रेण धुनानम अब्जम और दूसरे हाथ से भगवान फूल उछाल रहे हैं। भगवान के कानों के कुंडल दूर दूर तक जगमगा रहे हैं और उनके दौरदंड माने भुजदंड के ऊपर बहुत अच्छे अंगद आभूषण सुशोभित हो रहे हैं। ऐसे भगवान जब आए और उनका पीताम्बर था वो फड़ 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 कर रहा था, एक अजीब सुगंध, एक अजीब शोभा, एक अजीब ही वातावरण सनकादिकों ने देखा, देख करके और उनको यूं स्तब्ध हो गए, यूं निर्विवेश दृष्टि से देखने लगे। नेमुर निरीक्ष नवितृप्त दृशो मुदा कही, वो एक नाम यूं देखने लगे आंख फाड़ी, इतना मन में हर्ष पैदा, इतना सुंदर स्वरूप है। जो ही भगवान निकट में आए तो तस्या रविंद नयनस्य पदा रविंद किंजल के मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्विमीरेण चकार तेषाम संक्षोभ मक्षर जुषाम अपि चित्त तन्मोह। उस समय उनके चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करने के पश्चात वो प्रणाम करने के लिए सिर झुकाए हो तो नाक भी नीचे गई सिर के साथ साथ, उनके चरणों में जो तुलसी की गंध थी वो गंध जब उनके नाक में गई तो ऐसी समाधि लगी जैसी निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन में भी उनकी समाधि नहीं लगती थी, ऐसी विचित्र समाधि सी लग गई। संक्षोभ अक्षर जुषाम, अक्षर जुषाम माने निराकार में समाधिस्थ रहने वाले वे महापुरुष, उनके मन में संक्षोभ हो गया गंध का। संसार के सब जितने विषय उनमें सबसे नीचा विषय ये गंध का माना है, गंध का विषय नीचा है। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, गंध का नाम नीचे नीचे दिया। गंध का जो विषय भोग है इसको बहुत नीचा माना, मलिन माना है। लेकिन भगवान का जो गंध है वो गंध भी इतना ऊंचा है। तो फिर भगवान का शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये कितना विलक्षण होगा उनके। तो भाई वहां पर एकदम मति उनकी बदल गई और फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने मस्तक को ऊंचा करके भगवान के श्री विग्रह का दर्शन किया। वदनासित पद्म कोशम उद्वीक्ष, कमल के समान एकदम खिला हुआ ताजा कमल होता है ऐसा उनका भगवान का वो मुख कमल वहां देखा। और देख करके और फिर उन्होंने मुख कमल को देख करके और उनके चरणों की जो कांति थी उस कांति का फिर निरीक्षण किया। पुनरवेक्ष, क्या सनकादिकों को दर्शनों का आज आनंद आया हो। देख करके विचार किया कि पुंसांग गति मृगयताम यह योग मार्ग रे, जिनका हम ध्यान करते हैं ये भगवान तो पुरुष शरीर रखते हैं, ये पुरुष शरीर क्यों धारण किए कि भगवान बताना चाहते हैं, अरे पुरुषों मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि तुम्हारे प्रेम में मैं डूबा हुआ तुम्हारे जैसा ही रूप बनाए हुए बैठा हूं और तुम मुझे ही भूल गए, तुम मेरा ध्यान नहीं कर सकते, मुझे याद नहीं कर सकते, मैं तो तुम्हें इतना याद करता हूं तुम मुझे याद ही नहीं करते हो। ध्यानास्पदम बहुमतम नयनाभिराम, भगवान कहते हैं अरे पुरुषो तुम पुरुष शरीर को तो जानते ही हो ना, तुम उस पुरुष शरीर में पुरुष शरीर के रूप में मेरा ध्यान कर लो तो मैं सब प्रकार से तुम्हारा जन्म जन्मांतर का सब दुख दूर कर दूं। ऐसे मन में ध्यान रखते हुए सनकादि ऋषि भगवान को देख करके प्रार्थना कर लगे, महाराज सब प्राणियों के हृदय में आप निवास करते हैं, हमने हमारे पिताजी से आपके विषय में बहुत कुछ सुना था परंतु आज जब हमने आपके दर्शन किए हैं, दर्शन करने पर हमारे तो मन में और ही बात आ गई। हे महाराज आपके जो ये पावन दर्शन है इन दर्शनों के सामने हमें संसार का कोई सुख और कोई दुख न तो कोई सहयोग न तो कोई हमें प्रसन्न कर सकता है न हमको कोई दुख दे सकता है कष्ट दे सकता है कैसा भी कोई दुख हो। कामम भव स्वृजन दरियेषु नस्ताद, हमको आप चाहे नरकों में भेज देना तो भी आपका ये रूप हमारे दिल में बसा रहे, हमारी वाणी में आपका नाम बसा रहे, आपकी लीला आपका महत्व हमारे वाणी के द्वारा कहा जाए और कानों के द्वारा आपकी लीला और आपके गुण सुने जाए, इसके अलावा हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं। महाराज हमारे पास में कुछ भी नहीं है, हम आपको बड़ी श्रद्धा से नमस्कार करते हैं। हे महाराज जिसका हृदय पापों से भरा हुआ है उसको तो महाराज आपका स्वरूप पसंद नहीं आता, परंतु महाराज आपकी कृपा जिसके ऊपर विशेष होती है और जो आपका नाम लेता है आपकी कथा सुनता है उसको तो महाराज इस रूप से बढ़कर संसार में दूसरा कोई रूप आकृष्ट नहीं कर सकता। भगवान कहने लगे कि हे सनकादि ऋषियों ये जय और विजय तो मेरे सेवक है, सेवक के द्वारा कोई अपराध होता है तो वो स्वामी का ही किया हुआ होता है। मैं आपसे मेरे सेवकों के द्वारा किए हुए अपराध के प्रति क्षमा याचना करने आया हूं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए क्योंकि आप मेरे परम देवता हैं, परम आराध्य हैं, ब्राह्मण हैं, संत हैं, इसलिए मैं आपका बहुत आदर करता हूं। मेरा अनुपम यश जो संसार में फैला हुआ है वो आप लोगों के कारण से ही फैला हुआ है, यदि संत पुरुष न हो तो मेरा संसार में कौन यश फैला सकता है। संतों के प्रतिकूल चलने वाली मेरी भुजा भी होना तो उसको भी मैं काट करके फेंक देने वाला हूं। मुझे लक्ष्मी से भी कोई मतलब नहीं है, पर लक्ष्मी मेरे पीछे चिपकी रहती है। मैं लक्ष्मी से बड़ा बड़ा विरक्त हूं, फिर भी लक्ष्मी मेरा त्याग नहीं करती है। मैंने विचार किया कि लक्ष्मी मेरा त्याग क्यों नहीं करती, फिर विचार आ रहे मेरे पर संतों की कृपा है, मैं आप लोगों के चरण धूलि से पवित्र हुआ हूं। ब्राह्मण के मुख में गए हुए घी के ग्रास से मेरा भोजन होता है। उन ब्राह्मणों का यदि कोई अपमान करता है तो मैं उसे कभी क्षमा नहीं कर सकता। मेरे उन दोनों सेवकों ने आपको जिस प्रकार से अपमानित किया है, आपने इनको श्राप दे दिया। यदि आप बीच में श्राप नहीं दिए होते तो ये मेरे द्वारा बहुत बड़े भारी कोप भाजन को प्राप्त हो जाते और इन लोगों की बहुत बुरी दशा हो जाती। ओह धन्य है आपके श्राप ने इनको बहुत बड़े भारी विपत्ति से बचा लिया। देखो संतों का क्रोध होता है, क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्य है। लोग कहते हैं संकादिकों को क्रोध आ गया। अरे संकादिकों को क्रोध आया है, वो भगवान के संकल्प से आया है। अब भगवान क्या मांगते हैं, देखो भगवान कहते हैं कि अब आपने इनको श्राप दे दिया, अब मुझे आप थोड़ा वरदान दे दीजिए। क्या? भूयो ममान्तिकमिताम तदनुग्रहो मे, ये 3 जन्म के बाद मेरे यहाँ आ जाए, मेरी धाम में आ जाए, ऐसी आप कृपा करो। अब आप जिसको यहाँ से निकालो उसको मैं कैसे रख सकता हूँ जी? 3 जन्म तक राक्षस बनेंगे, पर आपने ये तो नहीं कहा ना कि 3 जन्म राक्षस बनने के बाद तुम यहाँ आ जाना, ऐसा तो आपने कहा नहीं। 3 जन्म तक ये असुर बन जाएंगे, पर उसके बाद इनका जीवन विचारों का यही हो जाएगा, मैं तो रख नहीं सकता इनको। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि 3 जन्म के बाद असुर शरीर ये निकाल लेवे, अवधि निकाल लेवे, तो यदि आपकी आज्ञा हो तो फिर महाराज इनको यहां रख लिया जाए। अब सनकादि क्या बोले? ब्रह्मा जी कह रहे हैं देवताओं, सनकादि तो भगवान की बात सुन करके ऐसे स्तब्ध हो गए। लघ्वीम गुरुवर्थ गंभराम, बात तो बड़ी छोटी सी थी पर इसका अर्थ बड़ा गंभीर था। तो हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज आपकी लीला अपरंपार है, इस लीला के मर्म को हम तो नहीं जान सकते। महाराज आप तो ब्राह्मणों का, महापुरुषों का, संतों का इतना सम्मान करने वाले हैं, आप ही से धर्म निकला है, आप ही से ही सनातन धर्म की रक्षा होती है, आपके ही ऐसी विलक्षण शक्तियां हैं कि बड़े बड़े ब्रह्मा आदि आपके चरणों की धूलि को अपने सिर पर रखते हैं महाराज। और यस्ताम विविक्त चरतैर अनुवर्तमानाम नाता नात्याद्रियत परम भागवत प्रसंग सत्वम द्विजान उत्पत पुण्य रजत पुनीत सत्वम द्विजा अनुपत पुण्य रजत पुनीत श्रीवत्स लक्ष्म किमगा भगभाजनस्त्वम। महाराज एकांत में रहने वाले और वो जो आपकी विचित्र शोभा है उसको वे महापुरुष ही जान पाते हैं जो एकांत में रह करके आपके लीलाओं का ध्यान करते करते उसमें निमग्न रहने वाले हैं। हे महाराज हम आपसे एक प्रार्थना करते हैं कि हम यहाँ बैकुंठ में आए, हमको तो उस समय कुछ ध्यान रहा नहीं, हमने कोई अपराध कर दिया हो ना तो आप हमको उचित दंड दे दीजिए। आपकी दृष्टि में यदि हमारा कोई अपराध है तो आप जरूर दंड दीजिए महाराज। अस्मास वास ये उचित है, धीताम से दंड है, आपको ये है पूरा अधिकार है, आप हमको दंड दे दीजिए। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरे ही संकल्प से आपके अंदर क्रोध का भाव आया था। ये बहुत दिन हो गए थोड़ी थोड़ी उद्दंडता कर रहे थे जय और विजय, इसलिए इनको मैं तो दंड दे नहीं सकता था, क्योंकि मेरे ही सेवक हैं और मैं कैसे दंड देऊं। इसलिए आपका अपराध कर लिया और ये बैकुंठ आप जैसे संतों का महात्माओं का, हम तो इसकी रखवाली करते हैं, आपने इनको दंड दिया, अब जो है आप इनके विषय में विचार मत कीजिए। सापो मई वे निमतस तदवई तभी प्राह, ये हमारे ही द्वारा दिया हुआ साप है। इस प्रकार से भगवान के दर्शन करके वो तो रवाना हो गए और लक्ष्मी जी को भगवान ने कहा, देखो लक्ष्मी ये जय और विजय एक बार तुम्हारे साथ टोका टोकी किए थे ना कि हाँ महाराज। लक्ष्मी जी कहीं बाहर गई भक्तों से मिलने के लिए, लक्ष्मी जी का तो काम है भक्तों की रक्षा करना, तो वो बाहर गई तो पीछे से क्या हुआ के जय और विजय वहां पर दरवाजे पर खड़े होकर के लक्ष्मी जी, हे लक्ष्मी जी आप देरी से कैसे आई, कहां गई थी। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से प्रार्थना की कि महाराज ये जय और विजय की खोपड़ी खराब हो गई, आजकल हमसे पूछते हैं तुम कहां गई थी, तो ये बैकुंठ है मैं मर्जी आए तब आऊं, मर्जी आए जब जाऊं, मर्जी आए जहां जाऊं, ये कौन होते हैं हमको पूछने वाले, इनका यहां से ट्रांसफर कर दीजिए, इनको निकाल दीजिए। भगवान ने कहा देखो लक्ष्मी जी ऐसा यदि मैं यहां करने लग जाऊंगा तुम्हारे कहे कहे तो दुनिया क्या कहेगी कि ये भगवान तो लक्ष्मी जी के कहे कहे करते हैं। कोई ऐसा समय अपने आप ही आ जाएगा कि न तेरे पर भार रहेगा न मेरे पर भार रहेगा और ये अपने आप ही चले जाएंगे, वही आज ये समय आ गया। तो भाई वो दोनों के दोनों इस समय में बैकुंठ से आए हैं और बड़ी शक्ति के साथ आए हैं, इनके ऊपर भगवान की भी कृपा है और इनके ऊपर संतों की भी कृपा है। कृपा के ढंग अलग अलग है, कृपा का रूप एक जैसा ही नहीं होता है, पर संतों की कृपा जरूर है। तो यही जय और विजय इस समय में दिति के बेटा बने हुए हैं और भगवान जाने और संत जाने, देवताओं अपने को इस विषय में कुछ भी विचार विमर्श नहीं करना, इनकी पंचायती में नहीं पड़ना चाहिए। जो इस संसार के कारण है महाकारण है और बड़े बड़े महापुरुष भी जिनकी माया को जान नहीं सकते हैं, वे भगवान हम सब के कल्याण के लिए जो करते हैं उसको देखते रहो, उनके विधान के बीच में पड़ने की तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। देवता लोग सब वहां से विदा हो गए ब्रह्मा जी के यहां से। अब पूरे 100 वर्ष हुए और दिति ने दोनों बेटों को जन्म दिया। जन्म देते ही भाई वो तो जन्म लेते ही बड़े हो गए एकदम, ऐसा नहीं धीरे धीरे बड़े हो, सब सृष्टि में उथल पुथल हो गया, चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश निस्तेज हो गया और जंगलों में जा जा करके पशु हैं वो भय के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे, पशुओं के गायों के गोबर गोमूत्र जो है वो उनके बिना कारण के ही उनके गोबर गोमूत्र उनसे निकलने लगा और बंदी न हो गए, ऐसी ऐसी सब जगह जो है आफत सी मच गई। और वो दोनों पैदा होते ही अपने हाथ में ले लिए गदा और गदा लेकर के सबसे पहले देवताओं के वहीं गए, देवताओं से कहा कि तुम ये स्वर्ग खाली करते हो कि नहीं। देवताओं ने देखा कि तो स्वर्ग तो खाली कराएंगे, देवता पहले ही कहीं जाकर के जो है निमिल ले रहे कहीं जाकर के छिप गए, वो सब है इधर उधर घूम घाम के सब स्थानों पर अपना कब्जा कर लिया। ऐसे करते करते हिरण्याक्ष था वो समुद्र के वहां पर पहुंचा। समुद्र के वहां पहुंच करके हिरण्याक्ष ने समुद्र से कहा, ए वरुण देवता तेरा स्थान ये जल ही है मैं जानता हूं, आओ मेरे से युद्ध करो। उसने कहा कि भाई तुम तो अभी जवान हो और हम तो बहुत बुढ़े हैं भाई, हम तो पहले जवानी में बहुत लड़ाई कर चुके, अब हमारे पास तो ताकत नहीं है, हम तेरे से युद्ध नहीं कर सकते, हमें बड़ा क्रोध आता है, कोई या तो योद्धा बताओ नहीं तो तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। तो कहा कि पुराण पुरुषोत्तम भगवान नारायण के अतिरिक्त तो कोई दूसरा तुमसे युद्ध कर नहीं सकता है, और उनके साथ युद्ध करोगे तो भाई तुम्हारी ऐसी दुर्गति होगी, ऐसी दुर्गति होगी, सही से वीर सही स्वभीर वृत है, तुम मरे रहोगे और तुम्हारे चारों तरफ कुत्ते हैं, तुम्हारे मांस को लोच लोच के खाते रहेंगे, ऐसी दुर्गति होगी। कौन है वो नारायण, कहाँ है वो, कहाँ है ये मुझे पता नहीं, ये संतों से पूछो। भगवान कहाँ है ये हम कैसे बताएं? हम महाराज भगवान के विषय में क्या बताएं, संतों से पूछो आप। तो हिरण्याक्ष ने नारद जी की शरण ली, नारद जी से पूछा, नारद जी से कहा अरे नारद वो नारायण कहाँ है। नारद जी ने कहा कि तुम आए कहां से हो, कि समुद्र में से आए तो समुद्र में ही मिलेगा वो। नारायण कहाँ है, जहां तुम हो वही नारायण है, तुम कहां हो कि हम समुद्र में, समुद्र में ही मिल जाएगा, जाओ समुद्र में मिल जाएगा कि हाँ मिल जाएगा, समुद्र से तो आया हूं। देखो तुमने नारायण के लिए पूछा वो मैंने बता दिया, अब तुम कितने ही शंका करते रहो उसका कोई उत्तर नहीं है। तुमने पूछा कहाँ है, हमने कह दिया समुद्र में, तो दोबारा समुद्र में गया। इतने में ही भगवान रसातल में जाकर के समुद्र को, समुद्र के नीचे रसातल है वो रसातल, वहां गई हुई पृथ्वी थी, वहां से भगवान उस पृथ्वी को अपने सींगों पर, दांतों पर रख करके और यूं ला रहे थे, ये बीच में मिल गया। अरे मेरे नारद जी ने कहा है मुझे कि तू नारायण है, नारद जी ने कहा है इसलिए मैं विश्वास करता हूं। देखो क्या विचित्र भाषा है, नारद जी ने कहा है इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि तू नारायण है, बोल तू नारायण है कि नहीं। हाँ नारद जी ने कहा इसलिए मैं नारायण हूं, तो नारायण हूं तो भाई ये इस पृथ्वी को तो छोड़ो और मेरे साथ युद्ध करो। भगवान ने कहा भैया युद्ध मैं कर लूंगा तेरे साथ, इस पृथ्वी को रखने दो, पृथ्वी वाली बीच में शर्त मत मानो। अरे पृथ्वी को ले जाओगे तब तो तुम हमारा अनर्थ ही कर दोगे, पृथ्वी को तो हम नहीं ले जाने देंगे, तो हम पृथ्वी को लेके जाएंगे कि हमको तो भाई तुमसे अब युद्ध करने का कोई बहाना तो होना चाहिए। भगवान ने देखा ये अच्छा बहाना मिल गया, हम तो ले जा रहे हैं पृथ्वी को। अब उसने गदा लेकर के भगवान पर खूब चोट मारी। भगवान ने देखा कि मैं पृथ्वी को छोड़ दूंगा और इसको मार भी दूंगा तो भी पृथ्वी नीचे चली जाएगी, मुझे तो पृथ्वी का जल्दी से जल्दी उद्धार करना है ताकि मेरे प्रिय मानव देरी क्यों करें, जल्दी से जल्दी वहां पर बैठ करके भजन करें, यज्ञ करें, पुण्य करें, कथा श्रवण करें। तो भगवान को अपने चोट से बचने की जल्दी नहीं लगी, पृथ्वी को लाकर के स्थापित करने की लगी, तो चोट खाते गए भगवान, चोट खाते गए। और वो भगवान को बहुत भला बुरा कहने लगा, बहुत माया करता है तू, बड़ा मायावी है तू, इस प्रकार से हमारे सामने माया करके और कैसा रूप बनाया हुआ है, बड़े बड़े देवता लोग तेरी पूजा करते हैं, इस कारण से तू इस पृथ्वी को ले जा करके रखना चाहता है, अब मैं देखता हूं। ऐसे करके बहुत चुपते चुपते शब्द कहे, भगवान पर गदा का प्रहार किया और भगवान पीठ पर सब गदा सहते गए उसे। और जब भगवान ने गदा वो पृथ्वी को ऊपर रख दिया, रख करके और सगाम उदस्ता सल्लस्य गोचरे विन्यस्य रख दिया, अब भगवान वापिस आएगा, अब आओ दो तीन तीन हाथ करते हैं। तूने हमसे क्या कहा था कि तुम तो वन गोचर हो, तो ठीक है हम तो वन गोचर हैं, तुम ग्राम सिंह हो, वन गोचर माने जंगल के पशु, और तुम हो गांव के पशु। ग्राम सिंह, ग्राम सिंह कौन होता है, पढ़े लिखे लोग जानते हैं, ग्राम सिंह कुत्ता होता है, कुत्ते का नाम ग्राम सिंह है। क्यों? क्योंकि कुत्ता अपने गांव में, अपने एरिया में, अपने स्थान में ही भोंकता रहता है, वो दूसरी गली में नहीं जा सकता, भूंगता भूंगता अपनी जगह ही भूकेगा, जाएगा आएगा। तो हम तो वन गोचर है लेकिन तुम ग्राम सिंह हो, आओ अब हमसे युद्ध कर लो, ये पृथ्वी तो हमने किसी की न्यास था इसलिए रख दिया, अब आ जाओ लड़ो। तो भाई आपस में इन दोनों का खूब घमासान युद्ध हुआ, भगवान के हाथ में भी गदा और उसके हाथ में भी गदा, एवं गदाभ्याम गुरुभिभ्याम हरियक्षो हरिरेवच, हिरण्याक्ष और हरि राशि एक थी, दोनों की एक राशि खूब आपस में भिड़ गए, एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बहुत पैंतरे उनको दोनों को ही आते थे। जब उस देवते ने देखा कि मेरे इनके ऊपर विजय प्राप्त करना बड़ा कठिन होता है, तब उसने वहां उन पर तरह तरह की माया फैलाई, माया मायापति भगवान पर माया फैलाई, ऐसी माया फैलाई हो कि वहां पर कभी पत्थर की वर्षा होती है, कभी खून की वर्षा होती है, कभी क्या होता है। भगवान ने सुदर्शन चक्र वहां लेकर के घुमाया, जोर से सब मायाओं का नाश हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज इसका अभिजीत मुहूर्त का समय निकल जाएगा, फिर संध्या का समय आएगा, ये राक्षस लोग, ये असुर लोग जो है ये बलवान हो जाएंगे, जल्दी करो आप। तब फिर भगवान ने जल्दी करने के लिए जो है उससे ऐसा युद्ध किया, वो त्रिशूल लेकर के आया, तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से त्रिशूल भी काट दिया। चक्रेण चित छेद, वो जो भी परिग लेके आया, परिग परिग को भी काट दिया, मायाओं को भी काट दिया। अब भगवान सोचते हैं कि शस्त्र से मारे, कैसे मारे इसको, शस्त्र से मारेंगे तो तीन जन्म की बात हुई हुई है, वो नहीं आएंगे तो अमर हो जाएंगे, तीन जन्म ही है। तो भगवान ने क्या किया उस समय, अब उसके हाथ में कोई शस्त्र नहीं रहा, तब भगवान ने लपक करके उसका एक गड़ा पकड़ा है, गड़ा पकड़ करके जोर से उसके मुंह पर मुक्का मारा और वहीं पर वो हाय हाय करके खत्म हो गया और देवताओं ने दुंदुभिया बजा दी। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सोनकादि ऋषियों, मैत्रेय जी वहां बताने लगे कि देवताओं ने आकर के भगवान की वहां स्तुति की है, नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे, पृथ्वी की रक्षा नहीं की महाराज, आपने यज्ञ की रक्षा की है। सबसे बड़ा बाधक यही था इस यज्ञ में, इससे आपने हमको छुटकारा दिला दिया, बड़ा अच्छा हुआ। ये बात सुनकर के हमारे मैत्रेय जी की, मैत्रेय जी से सुनकर के क्षतानंदम परम लेभे, विदुर जी को भी बहुत आनंद का अनुभव हुआ और विदुर जी महाराज इतने आनंद में मस्त हो गए और हिरण्याक्ष के वध की कथा सुने तो भाई मैत्रेय जी ने ये भी आगे सुनाया कि ये एक ऐसी कथा है कि इस कथा को सुनने से मनुष्य में अपार पवित्रता आती है और वो ब्रह्म हत्यारा भी होता है तो उसका पाप दूर हो जाता है। सौनक जी ने कहा महाराज फिर आगे क्या, विदुर जी ने प्रश्न किया तो कहते हैं विदुर जी ने प्रश्न किया कि प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी ने प्रजाओं का निर्माण करके प्रजापतियों को जो आज्ञा दी उसके बाद सृष्टि जो है जोड़े के साथ पैदा हुई या कैसे हुई जरा ये बताओ, माने स्त्री पुरुष से सृष्टि का विस्तार हुआ या उसमें ब्रह्मा जी का संकल्प भी था। तो मैत्रेय जी महाराज यहाँ एक थोड़ा सा और बोलते हैं, कहते हैं दैवे न दुर्वितर्केण है। अब यहाँ एक प्रारब्धवाद चलता है, जैसे सृष्टि में परमाणुवाद चलता है, आरंभवाद चलता है, विवर्तवाद चलता है और भगवान का संकल्पवाद चलता है, ऐसे यहाँ जीव का प्रारब्धवाद भी है। प्रारब्धवाद, प्रारब्धवाद माने जीवों का जो प्रारब्ध है उसके लिए भगवान सृष्टि बनाते हैं। भाई देखो किसी आदमी ने बहुत बड़ा देश के लिए काम किया, बहुत बड़ा देश के लिए काम किया, आजादी के लिए काम किया, सीमाओं की रक्षा में काम किया और यहाँ रहते हुए भी सब देशवासियों के लिए बड़ा अच्छा काम किया, तो क्या करते हैं समारोह रचते हैं, समारोह रच करके उनको सम्मान देते हैं। और किसी आदमी ने देशद्रोह किया, जनता के साथ बड़ी गद्दारी की, जनता के साथ बड़ी धोखाबाजी की और जनता को उत्पीड़ित किया तो उसके ऊपर मुकदमा चलाकर उसको जेल खाने में भेजते हैं, दंड देते हैं, वहां दोनों ही व्यवस्था है। अब जैसे उन दोनों ने जो कर्म किया है उस कर्म के अनुसार एक को पुरस्कार एक को दंड देने का एक विधान होता है, उसको जो है विधि पूर्वक पुरस्कार और विधि पूर्वक दंड देना एक न्याय है, एक कर्तव्य बनता है। ऐसे ही जीवों के अनादि काल के कर्म है, उन कर्मों के अनुसार जीवों का जन्म होता है और उनको कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो वो क्या है, जीव कर्म करता है तो जब लय होता है सृष्टि का उस समय में सृष्टि के अंदर जीवों के कर्म सुसुप्त रहते हैं और फिर जब सृष्टि का सर्ग होता है तब वो सब कर्म उनके भोगने के लिए सामने आ जाते हैं। इसका उदाहरण देखना हो तो आप लोग जानते होंगे मतिरा है, तरबूज है, तरबूज जिस समय में छोटा सा बीज में रहता है, जब बीज में रहता है उस समय में तरबूज नहीं, तरबूज जब बेल के लगते लगते मतिरा या तरबूज बड़ा होता है, बड़े होने के बाद देखो उसमें कितने कितने बीज आ जाते हैं। वो पक गया ना, तो पकने से उसमें बीज आ गए। ऐसे ही जब इसके कर्मों का ठीक परिपाक होता है, लय अवस्था में जीव के कर्मों का परिपाक होता है, परिपाक होने के बाद उन कर्मों का फल भुगताने के लिए सृष्टि बनाना भगवान के लिए अनिवार्य है। यदि वो सृष्टि में नहीं बनाएंगे तो इन जीवों का ऑपरेशन नहीं होगा, और ऑपरेशन हुए बिना ये कर्म की बीमारी इनकी दूर नहीं होगी, इसलिए भगवान सृष्टि को बनाते हैं। तो ये भी एक सिद्धांत है। इसलिए कहा दैवेन दुर्वितर्केन परेणा निमिषेण च, बाकी प्रक्रिया वही है, बाकी सृष्टि की प्रक्रिया वही है, लेकिन केवल केवल बाहर से नहीं, वो कारण क्या है सृष्टि का उसके भेद से भेद है। बाकी वही महतत्व होता है, वही अहंकार होता है, वही सब जीव बनते हैं। इनमें बताए कि यक्ष राक्षस क्यों होते हैं, ये ब्रह्मा जी को देख करके इन्हीं को ही खा जाओ, कि इनके इन कहा कि नहीं इनकी रक्षा करो, तो ये रक्षा करो वो तो हो गए, तो भाई यक्ष हो गए, खा जाओ वो राक्षस हो गए। फिर सिद्ध मनुष्य, फिर पितर और जो है साध्य विश्वेदेव ये सब बने, सर्प वगैरह सबकी सृष्टि बनी। सबकी सृष्टि बन जाने के बाद जब अंत में मनुष्य की सृष्टि बनी ना, तो तान दृष्टवा ये पूरा सृष्टि है प्रशंसु प्रजापति, तब वे ब्रह्मा जी की बड़ी प्रशंसा करने का, रे मनुष्य को बना दिया, ये बड़ा अच्छा किया, मनुष्य बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि मनुष्य के द्वारा सब लोगों का भला, सब प्राणियों का भला होने वाला है। और ब्रह्मा जी भी कृतकृत्यम एव आत्मभू, अपने को कृतकृत्य माने, अरे मनुष्य को बना दिया, मेरा सृष्टि बनाना सफल हो गया। तब जाकर के मनुष्य के बनने पर फिर आगे सृष्टि इससे उत्तम बनती नहीं है, इससे ऊंचा कोई प्राणी नहीं है, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाना बंद कर दिया। बनाना बंद कर देने का अर्थ कि इससे ऊंचा कुछ नहीं हो सकता, मनुष्य तक सृष्टि बनाई, बस अब जो है सृष्टि यहीं तक चलती रहती है, इतना ऊंचा मनुष्य का स्थान है। अब विदुर जी महाराज पूछते हैं कि महाराज आपने हमको बताया था कि मनु के तीन बेटियां थी और दो बेटा थे, तो तीन बेटियों में देवहूति थी, उसका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ था, और हमने ये भी सुना है कि उन कर्दम ऋषि के यहाँ साक्षात भगवान ने अवतार लिया था, जरा महाराज ये कर्दम और देवहूति का संवाद, और फिर कपिल का और देवहूति का संवाद, ये जो कथा है ये कथा हमको थोड़ा विस्तार से सुनाओ, ताकि हम लोग इस विषय को खूब अच्छे ढंग से समझ सके। तो अब जो है मैत्रेय जी महाराज कर्दम ऋषि का उपाख्यान सुनाएंगे, जो अपने मध्यम विश्राम के बाद यहाँ सुनेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेव,
हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेव,
हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव,
हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री भागवत महापुराण की जय, श्री वेद व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की जय।